या गीता और भागवत इसका एक बड़ा वैज्ञानिक आधार है। ये लोग भावुक लोग नहीं है, बस हरे कृष्ण करते रहते हैं, ये भावुकता नहीं है, बल्कि ये पूरे आंदोलन के पीछे इनका जो भी एक आध्यात्मिक संस्था चला रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा पुस्तक ही आधार, तो लोगों को एक एप्रिसिएशन बढ़ता है कि हां ये लोग एकदम शास्त्र के आधार पर ये कार्य कर रहे हैं और इनका प्रचार इत्यादि शास्त्र के आधार पर है। तो जन साधारण को इस संस्था के प्रति जो विश्वास है बढ़ता है कि ये लोग जो भी कह रहे हैं कोई नई चीज अपनाई नहीं है, पर सदियों से चली आई हुई, सृष्टि के शुरुआत से चली आई हुई जो परम सत्य है वो परंपरा में दे रहे हैं। तो इस्कॉन के प्रति या इस संस्था के प्रति या ये संदेश के प्रति, वैदिक संस्कृति जो हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान बढ़ जाता है, भले वो भक्त बने या नहीं बने, पर ये फिलॉसफी को सिस्टमैटिकली अगर सुनते हैं तो उनका सम्मान बढ़ जाता है संस्था के प्रति। और कम से कम लोगों को कहेंगे कि ये लोग जो दे रहे हैं ये अधिकृत है, ऑथराइज्ड है, इसको ये अपनी बनावट चीज नहीं। तो ये पहली बात है, जो लोग नए लोग सुनते हैं उनको ये बढ़ता है, समझ में आता है। और जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर सुने हैं, थोड़ा कर्म के बारे में सुने हैं, थोड़ा आत्मा के बारे में सुने हैं, थोड़ा भगवान के बारे में सुने हैं, थोड़ा योग के बारे में सुने हैं, जैसे जिग्सॉ पजल मालूम है, एक फोटो जैसा होता है उसको 8-10 टुकड़े करके अलग अलग बाघ है या कोई शेर है उसका 10 टुकड़ा कर देते हैं, किसी का पैर है ये, और बच्चों को दिया जाता है, सब जोड़ के वो चित्र को पूर्ण करो, देखा होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु ऐसे कृत कर रहे, उसको सब टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर सर कहां पैर कहां और सब जोड़ के उस चित्र को वापस डालना पड़ता है। तो जो लोग इधर उधर थोड़ा बहुत सुने हैं उन लोगों के लिए गीता कोर्स किस तरह से फायदा होता है कि पूरा चित्र उनको देखने को मिलता है, ओ हो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, आत्मा और परमात्मा में ये कनेक्शन है, प्रकृति और पुरुष में ये कनेक्शन है, और इस तरह से संपूर्ण जो सिद्धांत है उसका पूर्ण दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये हो गया जो लोग इधर उधर थोड़ा बहुत सुने हैं उनके लिए। जहां तक ऐसे लोग हैं जो लोग कई सालों से हरिनाम जप रहे हैं और दीक्षित है और जो तत्व ज्ञान को समझे हैं कई हद तक, उनके लिए गीता कोर्स क्या करेगा, क्या देगा, किस तरह से प्रचार सिस्टमैटिकली हम करें। तो अगर आप नोट्स लिख लोगे किस तरह से प्रभु जी बताएंगे, तो आपको आपको प्रचार कैसे करना चाहिए, कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर कैसे देना चाहिए, और हमारे सिद्धांत को, कृष्ण भावना जो सिद्धांत है, इसको एकदम सिस्टमैटिकली कैसा प्रस्तुत करना चाहिए, ये बहुत अच्छा से समझ में आता है। तो आप किसी स्तर पे हो, एकदम नए हो वो तो मैं अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि आप सब काउंसिल, खास ये काउंसिल लोगों के लिए, पहले बोले चैरिटी बिगिंस एट होम, घर के लोगों को पहले सुना, दूसरों को सुनाने से पहले, तो कई बार लोग बोल रहे थे कि हिंदी में नहीं हुआ है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप लोगों को भी आधार अच्छा हो जाएगा इस कृष्ण भावना में और प्रचार में भी मदद होगा। तो खास करके हम लोगों ने ब्रजवासी प्रभु से निवेदन किया, ब्रजवासी प्रभु एमटेक किए हैं, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग किए, बीई किए, फिर एमई किए टेलीकम्युनिकेशन में, और 1998 में मतलब 11 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया और तब से प्रचार कर रहे हैं, खास करके कॉलेज प्रीचिंग बहुत करते हैं, यूथ फोरम में, और अभी वो फिलहाल हिंदी भगवत दर्शन जो है, बैक टू गॉडहेड, उसके आर्टिकल्स लिखना या अंग्रेजी आर्टिकल्स कुछ आते हैं इंटरनेशनल मैगजीन में, उसका अनुवाद करना और पूरा जो हिंदी बीटीजी का जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, वो पूरा स्वीकार किया उन्होंने। इसके अलावा भक्ति शास्त्र सिखाते हो, भगवत गीता का और उपदेशामृत और भक्तिरसामृत सिंधु, और गीता, उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधु और
चौथा पुस्तक कौन? ईशोपनिषद। ये चार चीज जो है भक्ति शास्त्री है। तो इसको कोल्हापुर में और दूसरे जगह में भी सिस्टमैटिकली हिंदी में प्रचार कर रहे हैं, और बिट्स पिलानी में और गोवा में भी जाते हैं, और वहां कई विद्यार्थियों को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कल्टीवेट किया इन्होंने। तो हिंदी इनका एकदम शुद्ध है, मेरठ के पास पास है यूपी के तो हिंदी थोड़ा शुद्ध है, क्योंकि ये चीज बोलते वक्त कभी कभी थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो भी होना चाहिए। नहीं तो कोई बता रहे थे इंग्लिश और हिंदी तो दोनों मिलके कुछ अलग ही खिचड़ी बन जाता है। तो इसीलिए प्रभु जी से हमने निवेदन किया कि आप कृपया ये हिंदी गीता कोर्स कीजिए, और शायद हमारी अपेक्षा ये भी इच्छा है कि यहां होने के बाद अगर ज्यादा लोग हैं मीरा रोड में और साइन में ऐसी जगह में भी, खास करके हमारे जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं संस्था से ऑलरेडी, बार कभी इन लोगों ने गीता कोर्स नहीं किया है, उनके लिए भी करेंगे जैसे जैसे नंबर बढ़ेगी। तो पहले हमने सोचा हमारे काउंसिल लोगों के लिए करेंगे, उसके बाद काउंसिलिस्ट लोगों के लिए, उसके बाद चाहे तो आमतौर पर लोग करेंगे। तो पहली बार हमने यहां इंतजाम किया है, तो हमारा हमें आनंद हो रहा है कि आप लोगों ने इसका भाग लिया। कृपया आप अच्छी तरह से इसका फायदा लीजिए, और इसके बाद आप अच्छी तरह से समझिए, और प्रचार थोड़ा बढ़ना चाहिए आप सिस्टमैटिकली प्रचार करना शुरू कीजिए। कुछ लोग आप में से बहुत सालों से है, सबका चेहरा देखा हुआ है, तो अभी आप थोड़ा सिस्टमैटिकली प्रचार करने में भी मदद होगा। हरे कृष्ण। तो अभी ब्रजवासी प्रभु आएंगे, और चार दिन का ही, इज इट फॉर फोर डेज संक्षिप्त रूप में बट विस्तृत रूप से दोनों तरीके से वो समझाने वाले हैं, पूरे कवर करने वाले हैं पूरे संपूर्ण गीता में। तो जो भी प्रश्न है कृपया निर्लज्ज होकर पूछिए, शर्माइए मत। ज्ञान सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए हमको, प्रश्न पूछने में शर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए चार दिन में कर रहे हैं, पर अगर कोई भी आपका प्रश्न है, और आप चाहे तो नोट्स बनाइए, और कुछ प्रश्न आया तो लिख लीजिए आप, और अंत में आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स ऐसा बनाया गया है कि आज का प्रश्न कल आपको उत्तर मिल ही जाएगा, और नहीं मिला तो तुरंत पूछ लीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के चार दिन के इस सत्र में आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो नोट्स आपको मिले हैं, इसमें आप बाद में आप इसको रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अभी भी कुछ पॉइंट यदि आपको एक्स्ट्रा लगे तो नोट कर लीजिए। लेकिन ये प्रिंट आउट इसलिए दिया है जिससे कि क्लास में आप ध्यानपूर्वक सुन सकें, तो बाद में आपको चिंता ना हो। तो मुख्य पॉइंट्स हैं उसमें, तो विशेष रूप से जो चर्चा होगी इन चार दिनों में, वही जो छह दिन में होती है हम चार दिन में करेंगे, क्योंकि समय नहीं होता आजकल लोगों के पास, इसलिए चार दिन में कर रहे हैं। तो आनंद की खोज, क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या शास्त्र भगवान की वाणी है, भगवान एक है या अनेक, पुनर्जन्म वास्तविकता या कल्पना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्मों के नियम और सर्वोत्तम योग पद्धति। तो जैसे कि राधा गोपीनाथ पुरी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ा भाग रहा था इसके चक्कर में, कि आपने ऑलरेडी इतने से फिलोसफी सुना है, सब भक्तों के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये एकदम सही पद्धति सिस्टमेटिक करेंगे तो उससे क्या होता है, एक बार सुनने से एक थोड़ा लाभ मिल जाता है, फिर हम भी उसी प्रकार से दूसरों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने मन में कुछ संदेह है तो उसका समाधान कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन का महत्व, जैसे कि कभी भी जब हम प्रचार कार्य प्रारंभ करते हैं या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता है ये समझने की कि मानव में और पशु में अंतर क्या है। मानव और पशु, क्योंकि आजकल लोगों का कहना है कि हम भी पशु ही हैं, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, केवल हम जो है सोशल एनिमल हैं, सामाजिक पशु हैं, हम थोड़ा अच्छे से रहना जानते हैं, अच्छे से खाना जानते हैं। तो उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझ पाए कि मानव और पशु में क्या अंतर है। लेकिन शास्त्र का यदि हम सहारा लें तो मानव और पशु में अंतर समझ सकते हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति से पूछें मानव और पशु में क्या अंतर है तो वो क्या बताएगा? वो बोलेगा हमने इतना सब बनाया है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन सभ्यता का निर्माण किया है, इतनी बड़ी बड़ी कार बनाई हैं, इतने बड़े बड़े घर बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, पशु ने ये सब नहीं बनाया है। लेकिन प्रभुपाद जी पूछते थे कि हालांकि आपने ये सब बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है, उद्देश्य क्या है इन चीजों का बनाने का? उद्देश्य तो वही है ना, आहार निद्रा भय मैथुन। जो जानवर है, जो पशु है, वो भी खाता है और हम भी खाते हैं। हम भी सोते हैं, वो भी सोता है। सोने के बाद किसी को याद रहता है कि कहां सो रहा है? एकदम निश्चिंत चैन की नींद। बल्कि कई बार ऐसा देखने में आता है कि पशु ज्यादा आराम से चैन की नींद सोते हैं। किसी पशु को देखा है हमने नींद की गोली खाते हुए? नहीं देखा। लेकिन आजकल यदि हम देखें तो नींद की गोलियां बहुत बिक रही हैं। यदि आप किसी भी फार्मासिस्ट मेडिकल वाले के पास जाके पूछें जो आपके पहचान का हो, तो बताएगा कि बहुत नींद की गोलियां बिकती हैं बाजार में, और बड़े शहर जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा उसकी खपत, गांव में फिर भी कोई नहीं खाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन चीजों को प्राप्त करके हम विशेष हो गए पशुओं से। जो सुरक्षा की बात हुई, भय, भय भी सबको है इस दुनिया में। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको भय नहीं है? सबको भय है। तो भय जब होता है तो व्यक्ति सुरक्षा के अनेक उपाय करता है, और वो सुरक्षा के उपायों के लिए वो बंद कर दीजिएगा बाहर से, वो पीछे से दीजिएगा। तो सुरक्षा के उपायों के लिए हम लोग बड़े बड़े अस्त्र बनाते हैं, शस्त्र बनाते हैं, मशीन गन, मिसाइल, और जो पशु हैं वो अपने हाथ से, पंजों से अपनी रक्षा करते हैं। उसी तरह संभोग की बात है, बच्चे उत्पन्न करने की बात है, तो वो भी समान ही है। उसमें कुछ सुख में, उसमें आनंद में कुछ अंतर नहीं है। पशु जीवन में ही वही आनंद है और मानव जीवन में वही आनंद है, बल्कि कुछ आनंद है ही नहीं, वो ऐसा लगता है कि इसको सुख है। तो यदि केवल इन चार चीजों को देखा जाए तो कोई ज्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। लेकिन महाभारत बताता है आहा निद्रा भय मैथुनम च समन्यम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। कि आहार निद्रा और भय मैथुन यदि देखेंगे, केवल यदि इन चार चीजों को देखेंगे तो ये क्या है, इसमें पशु में और मानव में कोई अंतर नहीं है। अंतर कब आता है? धर्मेण हीन पशुभिः समाना, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। कि जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है तब क्या होता है, तब मानव का महत्व उसको समझ में आता है, तब मानव जीवन प्रारंभ होता है। क्योंकि धर्म का अर्थ यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं वो नहीं है। धर्म का अर्थ है भगवान के बनाए हुए नियम, जैसे कि भारत सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं भारत सरकार के निवासियों के लिए। तो जो भारत सरकार के जो निवासी हैं भारत देश के, उनका कर्तव्य है कि सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनका क्या किया जाए, पालन किया जाए। और जो व्यक्ति उन नियमों का पालन करता है वो स्वतंत्रता से रह सकता है, सुखी से रह सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो नियमों का पालन नहीं करता उसको कहां रख दिया जाता है, कहां रख दिया जाता है, कारागार में। तो कारागार में रख दिया जाता है, और कारागार में रखने से क्या होता है, सरकार उसको खाने के लिए देती है, पहनने के लिए कपड़े भी देती है, लेकिन समस्या यह है कि उसकी स्वतंत्रता कम कर दी जाती है। उसकी स्वतंत्रता कम है, उसको वो जेल की, कारागार की चार दीवारों के बीच में रहना पड़ता है, और बीच में रहकर ऐसा नहीं कि आराम से रह रहा है। जेलर उसको मेनू ला के दे रहा है, आज कौन सी आइसक्रीम खाएंगे आप, ऐसा करता है क्या जेलर? यदि किसी जेल में ऐसा हो रहा है कि ये आइसक्रीम वो आइसक्रीम और गुलाब जामुन और पुलाव और रसमलाई बांटी जा रही है रोज रोज 6 आइटम फीस में, और कोई व्यक्ति आया वहां पर बोला अरे ये कैसी जेल है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है, तो ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत जैसे हमने सबने सुना है कारागार के समान है। तो कारागार में उन लोगों को डाल दिया जाता है जो उस देश के धर्म का पालन नहीं करते। उस देश का धर्म है उस देश का संविधान, उस देश के सरकार द्वारा बनाए गए नियम। तो जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के परे है, परस तस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातना, कि इस भौतिक जगत के परे एक दूसरा जगत है जो आध्यात्मिक जगत है, जो सनातन है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और इस भौतिक जगत का क्या होता है, सृष्टि होती है और विनाश होता है। और जब जीव इस जगत में आता है तो उसको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि जीव उस भौतिक जगत में रह, उस आध्यात्मिक जगत से यहां पर आया है, और यहां पर क्यों आया है, क्योंकि वो भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहता, तो उसको कहां रख दिया जाता है, कारागार में रख दिया जाता है। तो कारागार में रखने का अर्थ है कि आपको जीवन की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, केवल वही प्राप्त होंगी, उसके ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत सारी अपूर्णताएं हैं, कमियां छोड़ दी हैं भगवान ने। इस उन कमियों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग हम शोध कर रहे हैं, अलग अलग चीजों का निर्माण कर रहे हैं, और उन चीजों का निर्माण करके क्या करेंगे, हम सबको क्या कर देंगे। क्या वैज्ञानिकों का आश्वासन क्या है, हर कोई व्यक्ति क्या वादा कर रहा है, बैंक वाला हो या वैज्ञानिक हो या कोई कंपनी वाला हो, क्या वादा कर रहे हो, हाँ जी, इससे अच्छा बेहतर बना के आपको सुखी बना देंगे हम, आप हमारा माल ले लो, हमारा प्रोडक्ट ले लो, आप क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, कोई चिंता नहीं रहेगी जीवन में, सब प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा हो है कभी, ऐसा कभी नहीं होगा। तो भौतिक जगत में कोई व्यक्ति यदि बोले कि हम कमियों को दूर करके सुखी कर देंगे, या भगवान ने कमियां छोड़ दी हैं, तो भगवान ने कमियां नहीं छोड़ी हैं। इस भौतिक जगत में ये जो कारागार के समान है, यदि सब कुछ अच्छा हो तो फिर वो कारागार ही क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, यदि उसको तीनों टाइम आइसक्रीम मिल रहा है, रसगुल्ला मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहे हैं, जिस प्रकार के कपड़े उसे चाहिए वो मिल रहे हैं, तो फिर वो किस प्रकार का कारागार हुआ। तो भौतिक जगत जो है, यहां पर जो दुख है जिसकी चर्चा हम करेंगे अभी आगे, वो इस जगत को पूर्ण बनाते हैं, इस जगत को अपूर्ण नहीं बनाते हैं। ये बात समझ में कि बहुत आवश्यक है। इस भौतिक जगत में जो ये दुख है, ये इस भौतिक जगत में जो दुख है, इस भौतिक जगत को पूर्ण बनाते हैं। क्योंकि भौतिक जगत का उद्देश्य क्या है, सुख देना नहीं, दुख देना। मामु पेत्य तो पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, भगवान भगवगीता में बोलते हैं जगत क्या है, दुखालय, दुख का स्थान है। जैसे कि हिमालय होता है, हिमालय किसके चीज का स्थान होता है, हिम का, वहां पर बर्फ होती है। पुस्तकालय, वहां पर क्या होता है, पुस्तकालय, पुस्तक होते हैं। उसी तरह से दुखालय, तो यदि भौतिक जगत दुखों से भरा है, ये दुखों का स्थान है, ये बनाया इसलिए गया है कि जिससे कि जीव जो है वो सुधरे। कारागार में क्यों डाला जाता है व्यक्ति को, सुधरने के लिए। उसको दंड दिया जाता है, उससे कठोर परिश्रम कराया जाता है, उसकी स्वतंत्रता को रोक दिया जाता है, जिससे कि वो सुधरे। तो जीव सुधरना नहीं चाहता, तो इसलिए वो अलग अलग दुख उसके जीवन में आते हैं। तो जब भगवान बोलते हैं, जैसे उपनिषद में बताया जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि तो ये जो भगवान जो है वो पूर्ण है, और भगवान जो पूर्ण है और भगवान से जो आता है वो भी क्या है, वो पूर्ण है, और जो बचता है वो भी क्या है, पूर्ण है। ऐसी कोई भौतिक जगत में चीज देखी है हमने, कोई देखी है आपने ऐसी चीज, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेपर लेते हैं, ये पेपर है, तो ये पेपर है, इसको यदि हमने फाड़ दिया अभी, कितना हो गए, अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए, अभी कितने हो गए, ट्राई करेगा कोई, मेरे से तो नहीं हो रहा है। कितने हो जाएंगे करेंगे तो, ठीक है, तो अभी ये हो गए कितने, 16 हो गए, ये 16 हो गए, लेकिन जो ओरिजिनल पेपर था वो कहां गया है? वो खत्म हो गया। तो ये लोग समझते हैं ऐसा कि जो ब्रह्मन है वो टुकड़े टुकड़े हो गया, उसका जो ओरिजिनल अस्तित्व है वो खत्म हो गया। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान पूर्ण है। मैं तो जादूगर नहीं हूं, मान लीजिए वो जादूगर है, उसने टुकड़े किया, फिर भी एक पेपर उसके हाथ में है, ऐसा समझिए। लेकिन आपको फिर से एक पेपर ला के दिखा देता हूं। तो ऐसा है कि भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं कितने रूपों में, 1, 2, 3, 4, 5, कितने रूपों में विस्तार करते हैं, अनंत रूपों में, अनंत चीजें उनके शरीर से बाहर निकलती हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला आपने सबने सुनी होगी, जब ब्रह्मा जी आए उन्होंने क्या किया, किसी को मालूम है क्या किया ब्रह्मा जी ने? चुरा लिया। किनको चुरा लिया? गोप को और बछड़ों को। तो भगवान ने अपने आप को सब गोप और बछड़ों के रूप में विस्तार कर लिया। उसी तरह से भगवान हर कण कण में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। उसी तरह से महाविष्णु जो है उनके शरीर से क्या निकलता है, जब वो सांस छोड़ते हैं तो कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान से जो निकलता है तो भगवान में कुछ कमी रह गई, भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो भगवान पूर्ण है और जो उनसे निकलता है वो भी क्या है, अपने आप में पूर्ण है। तो इसलिए लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि जो भगवान से निकला, ये भौतिक जगत भी कहां से आया, किससे आया? भगवान से आया। तो यदि ये भी भगवान से आया है तो ये भी पूर्ण होना चाहिए, और यदि पूर्ण है तो फिर यहां पर दुख क्यों है? ये समझ में आ रहा है ये प्रश्न? यदि आप बोल रहे हैं कि पूर्ण है तो फिर यहां पर दुख क्यों है? फिर तो क्या उत्तर है इसका? हाँ बताइए। हाँ आपका ने बताया, ठीक है, उनसे ही पूछते हैं अभी। हाँ, इस जगत की पूर्णता यह है कि यहां पर दुख होने चाहिए। जैसे कि कारागार की पूर्णता क्या है, कि वहां पर क्या होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, दंड होना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको पता नहीं कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ क्या होता है, वो जल जाता है, और वो अग्नि में हाथ डालता है, और अग्नि से यदि जलने का सेंसेशन नहीं होगा, मान लीजिए तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, उसने हाथ डाला तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हाथ खत्म हो जाएगा पिघल के, उसको पता भी नहीं लगेगा कि हाथ जल गया मेरा। सोचिए आप, ऐसा होता तो क्या होता? तो भौतिक जगत में जो दुख बनाए गए हैं ये इसलिए बनाए गए कि हम समझें। क्या समझें? हमारा नहीं है ये। भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कहानी बताते थे, प्रहारेरा धनंजय। वो बोलते थे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसकी 8 लड़कियां थी। 8 लड़कियां होना मतलब आजकल के जमाने में तो वो आत्महत्या कर ले एक लड़की की शादी कराने के लिए, इतना कई बार मुश्किल हो जाता है। लड़की हो लड़के का भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है, विवाह बहुत धन खर्च करना पड़ता है। तो उसने किसी तरह, पुराने जमाने की बात थी, 8 का विवाह हो गया। तो अभी जब आपको पता है सब छुट्टियों के समय में गर्मी की छुट्टियों में आते हैं अपने अपने माता पिता के घर में, तो 8 की 8 लड़कियां आ गई अपने अपने पति के साथ। तो मेहमान आते हैं तो 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, 1 हफ्ता रहते हैं, चले जाते हैं। तो बड़े प्रेम से बड़े चाव से सब सेवा करने लगे, उनके पिता उनके भाई अलग अलग पकवान बनाने लगे। तो 8 में से 1-2 लोग चले गए, उनका टन समय हो गया जाने का, बाकी के लोग जा ही नहीं रहे थे, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। तो ये जो पिता थे उन्होंने बोला, अरे ये तो जाना चाहिए, बहुत हो गया अभी। तो वो क्या करते हैं, आइटम कम करना शुरू कर देते हैं, 1 दिन केवल राइस दाल केवल, और थोड़ी सी सब्जी, चपाती नहीं। तो कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता है, अरे क्या ससुर साहब हमारे, हम तो कभी कभी आते हैं ऐसा कर रहे हैं। तो 1-2 लोग उसमें से और चले जाते हैं अपमान होके, छोड़ो अभी हमारी जरूरत नहीं। 3-4 वो भी बचे हैं, तो सब्जी भी बंद, केवल दाल चावल केवल दाल चावल, अभी भी कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। 2 लोग और चले गए, 2 लोग अभी भी बच गए। तो अगले दिन केवल दाल चावल, नमक नहीं। तो बोला नमक तो दो, बोला नमक खत्म हो गया घर में, ऐसे ही खाना तो खाओ। तो वो एक आदमी को बड़ा खराब लगता है, वो भी चला जाता है अपनी पत्नी को लेके। एक जा ही नहीं रहा है, बिना नमक के भी खा रहा है, खुद से नमक जाके ले आता है बाजार से डाल के। तो बोलता है इसका कुछ करना पड़ेगा अभी। तो बेटे को बोलता है अरे कुछ करो इसका। तो रात को पकड़ के उसकी धुलाई करता है बहुत। तब वो भागता है वहां से। तो ये कहानी बताते हैं कि जो भौतिक जगत में भगवान माया देवी बोल रही है तुम्हारा घर नहीं है, भागो यहां से निकलो। अलग अलग तरह से अपमान कर रही है, पिटाई कर रही है, मार कर रही है, फिर भी हम क्या जिद्दी है, नहीं यहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो करेंगे, खुद का नमक खरीद के ले आएंगे। लेकिन जो अपमान हो रहा है, जो हो रहा है, उसको सहेंगे नहीं, सहते रहेंगे। उसका कारण यह है कि लोग अज्ञानता में है, लोगों को ज्ञान नहीं है। बाहर की दुनिया में लोग दुखी हैं, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। उनको लगता है इसी से बस जो मिलना है हमें क्या करना है, इसी से बस। जैसे कि जो व्यक्ति होता है, गन्ने का उदाहरण देते थे प्रभुपाद जी, कि गन्ने का जब आप डालते हैं, जो गन्ना का जूस निकालने की मशीन होती है, उसमें से जूस निकाल लिया है और उसको फेंक दिया है, और फिर वो उसको चूसने का प्रयास कर रहा है। ये जो बांस होता है वो गन्ने के समान दिखता है, लेकिन बांस को चूस के प्रयास करके क्या प्रयास कर रहा है कि उसमें से क्या मिल जाए, मुझे रस मिल जाए। ये रस मिलता है क्या? तो विकल्प नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि भाई गन्ना कहीं उपलब्ध है। तो लोगों को ज्ञान नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन में सच्चा सुख है। तो इसलिए वो धर्म का पालन नहीं करना चाहते, बल्कि धर्म को वो क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पे सब झगड़े होते हैं। ये धर्म ही सब झगड़ों की जड़ है, धर्म को छोड़ो। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों ने बहुत अत्याचार भी किया है, धर्म के नाम पर लोगों ने बहुत गलत कार्य किए हैं। लोग साधु का ड्रेस पहन के, पादरी का ड्रेस पहन के, या मौलवी का ड्रेस पहन के बहुत बहुत बुरा काम किए हैं। तो जब लोगों पर अत्याचार हुआ तो लोग बोले नहीं, ये धार्मिक लोगों का कुछ नहीं सुनने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो सारे गलत हैं। बुद्धिमत्ता यह है कि सही जगह से ज्ञान प्राप्त किया जाए, तब हम कुछ समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट हम आगे देखेंगे जैसे जैसे, लेकिन पहली बात समझने की यह है कि यदि हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम कैसे हैं। धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशु भी समाना। हम किसके समान हैं? पशु के समान है। तो पशु के समान होने से क्या होता है, पशु और मानव में क्या अंतर है, कोई बता सकता है पशु और मानव में क्या अंतर है? मानव धर्म का पालन करता है, पशु जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए पहला है जो ऊपर का पशु है वो क्या कर रहा है, और नीचे के लोग भी खा रहे हैं। अभी दोनों में अंतर कुछ नहीं है, यदि दोनों कुछ भी खाएं, पशु जो है कुछ देखता है क्या खाने में, देखता है, सोचता समझता है क्या खाने में, जो मिलता खा लेता है। मान लीजिए आपने एक अच्छा हलवा या खिचड़ी बना के रखा बाहर, तो कुत्ता आएगा और खाएगा नहीं खाएगा बताइए? कोई साधारण व्यक्ति आएगा और खाएगा या नहीं खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, क्या संदेह रहेगा उसे? विशेष रूप से आप ट्रेन में रख दो एक पेड़े का डिब्बा ले जाके, आजकल के जमाने में रखने की बात तो छोड़ो, आप किसी को दोगे तो भी नहीं लेगा। क्यों क्यों नहीं लेगा पेड़ा? नहीं नहीं नहीं, इतना आगे नहीं जा रहे हैं। क्या डर लगता है, विष हो सकता है, कितने बार उनका सब कुछ हड़प लिया है। एक बार एक जगह जा रहे थे और उसने क्या किया, दो फ्रूटी के डिब्बे निकाले, पेड़ा भी नहीं फ्रूटी सिंपल, और एक खुद पीने लगा और दूसरा उनको देने लगा। तो उनको लगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, और बाद में वो पूरा ऐसा बेहोश हो गया वो व्यक्ति, यार्ड में जब गाड़ी गई वहां पर जाके उसको जो सफाई करने वाले आते हैं ना, वो उठाए उसको, और उसके पास जो भी जितने जो दो तीन बैग थे वो सब गायब। तो लोगों को डर लगता है, वो नहीं लेगा आजकल के जमाने में, लेकिन पशु को तो नहीं पता है। तो ये जो बुद्धिमत्ता है जैसे माता जी ने बताया, ये पशु के पास नहीं है, अंतर देखने की, भेद देखने की कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन जो आजकल के लोग हैं वो भी, हालांकि बड़ी डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं यहां पे आप देखिए, लेकिन कुछ भेद कर रहे हैं क्या, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक तरह से देखा जाए तो उनको बुद्धि नहीं है कि क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं। यदि मेडिकल चिकित्सा की दृष्टि से भी देखा जाए तो जो मांसाहार की चीजें हैं वो कैसी हैं स्वास्थ्य के लिए, बहुत खराब है वो। तो भेद नहीं करते हैं, तो आहार में भेद नहीं, और एक तरह से देखा जाए तो वो समान भी है, क्योंकि खाना किसके लिए है, हमारे लिए जीने के लिए है, खाना नरिशमेंट के लिए, खाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं खाना ही सब कुछ है जीवन में, है दे वॉन्ट टू लिव टू ईट, वो जीना चाहते हैं खाने के लिए, लेकिन खाना किसके लिए है, जीने के लिए। तो उसी तरह निद्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया वो चीता ऊपर आराम से सो रहा है, ये व्यक्ति अपने घर में डनलप के गद्दे पे सो रहा है, लेकिन एक बार व्यक्ति जब सो गया तो सोने के बाद कुछ याद रहता है क्या, कुछ याद नहीं रहता, कहीं भी सो जाओ। भय, ये देखो बड़े बड़े मिसाइल लेके गन लेके, और ये व्यक्ति अपना ऐसे कर रहा है। तो बात ऐसी है, या बाकी की जो भी संबंध है स्त्री पुरुष के बीच में, ये समान है, लेकिन अंतर कब आता है, अंतर जब आता है कि जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं सही और गलत का भेद समझने में। हम ये पूछते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं। एक होता है ब्राह्मण और एक होता है कृपण। शास्त्र बताते हैं कि ब्राह्मण और कृपण ये दो चीज समझना आवश्यक है। कृपण मतलब कंजूस और ब्राह्मण मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो जो कृपण व्यक्ति है उसकी क्या विशेषता होती है, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। एक कंजूस व्यक्ति के पास पूछ रहा हूं मैं, ब्राह्मण की बात नहीं आई। कोई कंजूस व्यक्ति देखा है किसी ने, किसी ने कंजूस व्यक्ति का सुना है, कोई कहानी पढ़ी है? बचपन में पढ़ते थे हम। कंजूस व्यक्ति का क्या विशेषता है, और कोई विशेषता? वो देता ही नहीं कुछ, इतना धन होगा उसको रखेगा अपने पास, खर्चा एक फुटी कौड़ी नहीं करेगा। तो मानव जीवन जो है वो इतना मूल्यवान है, ये मानव जीवन इतना विशेष है, इसमें इतनी विशेष उपलब्धियां हैं, लेकिन इतनी विशेष उपलब्धियां होने के बाद भी व्यक्ति क्या होता है, कंजूस होता है, और इसका प्रयोग जिस चीज के लिए करना चाहिए उसके लिए नहीं करता, और जिसके लिए नहीं करना चाहिए उसके लिए करता है, तो इसके लिए वो कंजूस है। तो आजकल के समाज में लोग क्या है, कंजूस है, आध्यात्मिक दृष्टि से कंजूस है। उनको यदि हम बोले कि आप आइए एक आध्यात्मिक सत्संग है, थोड़ा भगवद गीता पढ़िए, तो क्या बोलेंगे, टाइम नहीं है। तो कंजूस है वो, क्योंकि वो अपने समय का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण वो है जो जीवन के मूल्य को समझता है। जैसे कि भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, कि हे अर्जुन तुम अनार्य की तरह व्यवहार मत करो। अपूपा जी अनुवाद करते हैं आर्य की परिभाषा, आर्य व्यक्ति वो है जो जीवन के मूल्य को समझता है। तो जीवन के मूल्य को समझना आवश्यक है। जीवन का मूल्य ये नहीं कि केवल खाना पीना सोना मैथुन करना और जीवन समाप्त कर देना, वो तो पशु भी करते हैं, फिर अंतर ही क्या हुआ। तो जीवन का मूल्य समझना कि जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनको हम विजय प्राप्त कर सकें, हम समझ सकें कि ये जो हर समय जो निराशा है, दुख है, चिंताएं, इनसे कैसे बाहर निकला जाए, जीवन का क्या उद्देश्य है, मेरे जीवन में इतने दुख आते हैं उनसे मैं कैसे बाहर निकलूं। तो क्यों जानना है हमें जीवन का उद्देश्य, क्योंकि यदि हम इस विषय पर जिज्ञासा न करें तो हम अच्छे पहनावे वाले व्यवहार कुशल दब्बे दो पैर वाले पशु ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान, पशु के समान हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण है, आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में, एक तरफ ट्रैक्टर और दूसरी तरफ क्या है, कार है। मान लीजिए आपके बर्थडे पर आपके कोई करोड़पति अंकल हैं, इमेजिन कीजिए, नहीं भी हैं तो भी, अमेरिका में रहते हैं और आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, और एक बार आए बहुत उनका धन का लाभ हो गया और आपको, आप गांव में रहने वाले हैं, ट्रैक्टर पे काम करते हैं और आपको वो मर्सिडीज कार भेंट में देके जाते हैं, ये वाली कार मर्सिडीज या जो भी अच्छी कार है, और आप बोलते हैं अरे बहुत अच्छी बात है आपने हमें अच्छी कार दी भेंट में, और आप उस कार का प्रयोग किस लिए करने लगते हैं? है? गैस कीजिए, किसके लिए करने लगते हैं? ट्रैक्टर की जगह कार को लगा देते हैं खेती में, या जो खेती से जो अनाज निकलता है उसको भर के आप मार्केट यार्ड में ले जाते हैं। तो अंकल बोलेगा अरे वापस कर दो मेरी कार, कोई फायदा नहीं है कार का आपको देने से, आपको बुद्धि नहीं है इस कार का प्रयोग किस लिए करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ऐसे भगवान भी करते हैं, भगवान ने मानव जीवन हमें दिया है जो इतना महत्वपूर्ण है, जो बाकी की यूनियन से बहुत विशेष है, लेकिन हम इस मानव जीवन का प्रयोग उन्हीं चीजों के लिए कर रहे हैं जो बाकी की यूनियन में भी की जा सकती है, बल्कि इससे अच्छा की जा सकती है। हमें खाने का शौक है, कितना खा सकते हैं? यदि बॉम्बे में जितने भी फाइव स्टार होटल हैं उन सबका भी भोजन हम लाव के रख दें, हाँ बोले चलो खाओ कितना खाना है, कितना खाएंगे? एक आइटम, दो आइटम, पचास आइटम रख देंगे तो देख के पेट भर जाता है। एक कई बार लोग होते हैं कि किसी एक बड़े घर में रहते हैं, बहुत बड़ा घर होता है उनका, 50 कमरे 40 कमरे, और रहे कौन रहे, एक बुढ़ा एक बुढ़ी, क्योंकि बच्चे चले गए अमेरिका इधर उधर और वो पूरा भूत बंगला है, कितने कमरों में रहेंगे? एक दिन इस कमरे में, एक दिन उस कमरे में, ऐसा भी नहीं कर सकते, साफ करना पड़ता है। भौतिक जगत में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, 40 कमरों का घर बनाया भी तो उसको रोज साफ करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए 20 नौकर। तो कई बार धनवान लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, कोई बोलता है एक घर मगर मेरा अलीबाग में है, एक ऋषिकेश में है, एक लंदन में है, एक तमिलनाडु में कहीं तो है, एक केरला में है, एक गोवा में है, एक लोनावाला में है। जाते कब? बोले साल दो साल में एक आध बार कभी जाता हूं, लेकिन है मेरा घर। रहता कौन है उधर? नौकर चाकर, उनके पेमेंट, वो रह रहे हैं, वो मजा कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में कोई भी चीज यदि हमें प्राप्त करनी है तो इतनी आसान नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने हमको इतना अच्छा उपहार दिया और हम उसका हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो हमसे वो वापस ले लेगा। तो ये जो मानव जीवन अभी हमें मिला है, यदि इसका सही प्रयोग हम नहीं करेंगे जिस उद्देश्य के लिए मिला है, तो उसको क्या ले लिया जाएगा? वापिस ले लिया जाएगा। और फिर हम कहां चले जाएंगे? फिर इससे नीचे की योनियों में। तो सबसे बड़ा जो भय है, जब भगवान भगवीता में बताते हैं नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि हे अर्जुन, कि जो इस मार्ग पर थोड़ा भी कार्य करता है, आध्यात्मिक पथ पर थोड़ा भी प्रगति करता है, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम, स्वल्पम मतलब थोड़ा भी, अल्पम अपयस्य धर्म से, जो धर्म के मार्ग पर थोड़ा भी कार्य करता है, त्रायते महतो भयात, वो बहुत बड़े भय से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ा भय है कि फिर से नीचे की योनियों में जाना, क्योंकि नीचे की योनियों में मिलेगा आहार निद्रा भय मैथुन, खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, मैथुन करने को मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन स्वतंत्रता जो है वो बहुत क्या हो जाती है? चोक हो जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। अब देखिए पशुओं का जीवन कितना संघर्ष करना पड़ता है उन्हें, इतना आसान नहीं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा है कभी ये 4-5 कुत्ते हैं और आप एक रोटी फेंको, ऐसे भाव भाव करके वो झगड़ा करते हैं, या मैथुन के लिए भी, संघ के लिए भी, एक कुतिया के पीछे कितने कुत्ते पीछे पड़े रहते हैं। उनका समाज जीवन ऐसे नियम कानून नहीं है कि भाई विवाह करके ऐसे रहेंगे हम, ऐसा कुछ है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। शेर जो कि जंगल का राजा होता है, उसके लिए भी इतना आसान नहीं है। जब शेर शिकार के लिए निकलता है तो एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, पशु होता है, वो आगे दौड़ने लगता है, वो उड़ने लगता है और आवाज करता है, और उस आवाज से पता लग जाता है कि अभी शेर कहां निकला है, शिकार के लिए निकला है, तो सबको पता लग जाता है, सब अलर्ट हो जाते हैं। तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है शेर को एक शिकार ढूंढने के लिए, और ऐसा नहीं कि रोज उसके एक शिकार मिल जाता है, नहीं, एक मिल गया, एक हफ्ते दो हफ्ते में उसको रखता है, संभाल के थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। तो इतना आसान नहीं है। पशुओं के जीवन में जब दुख आते हैं तो वो पूछ भी नहीं सकते हैं दुख क्यों आ रहे हैं, सब रोते रहते हैं, दुखी पड़े रहते हैं, है? लेकिन हम किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। जैसे कि एक बार जो क्या हुआ, तेल का जो तेल निकालते हैं ना समुद्र से, तो उसमें एक वो बनाते हैं जैसे बॉम्बे हाइव है, तो एक बार उनका तेल बहुत लीक हो गया उधर, तो सब तेल फैल गया उधर समुद्र में, तो जितने भी जानवर थे, जानवर नहीं वो जो होते हैं मछलियां और वो सब जानवर समुद्र के जो प्राणी होते हैं, तो वो मरने लगे। तो जब वो मरने लगे तो कुछ ये जो प्राणी बचाने की संस्था होती है, तो वो एकदम आ गए दिखाने के लिए, हम भी पशुओं को प्राणी को बचाना चाहते हैं, बचाने हैं तो उसको बंद कर दो ना तेल वेल को, वो तो आप लोग करते नहीं, सब हमको भौतिक प्रगति करना है, दिखाना है कि हमें बहुत आगे निकलना है। तो उन्होंने $18,000 खर्च करके एक विशेष प्रकार की सील नाम की मछली होती है उसको बचाया, किसी तरह उसके अंदर तेल चला गया होगा, उसको डॉक्टर का सहारा लेके सब करके, और $18,000 खर्च किए और बचाने के बाद फिर से उसको जब समुद्र में छोड़े और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो बाद में समाचार आया कि 10-15 मिनट बाद की ह्वेल मछली ने उसको खा लिया। तो इस जगत के दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे यदि किसी के, तो कर पाएंगे क्या? एक समस्या दूर करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी समस्या दूर करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, चाहे अपने जीवन में हो या दूसरे के जीवन में हो। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है और बड़ी अज्ञानता में सोचते हैं कि इस जगत में हम सुखी हो जाएंगे, इस जगत में हम कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ प्रयास करके सुखी हो जाएंगे। तो ये जो प्रयास सुखी होने का, ये बहुत ही बड़ा मिथ्या प्रयास है, और उसके लिए जो हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये ऐसा है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, मर्सिडीज कार का प्रयोग खेती का काम करने के लिए कर रहे हैं, तो बोलेंगे भाई वापस कर दो, बहुत हो गया। तो वास्तविक समस्या वह है। तो अभी एक दूसरा, अभी एक टॉपिक शुरू हो रहा है, वो टॉपिक ये है, एक मुझे मिलेगा ये पेपर, अब पीछे से और मंगा लीजिए, कि अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे जीवन में जो है वो दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, और मानव जीवन जो है वो विशेष है, क्योंकि इसमें हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, इन दुखों का क्या समाधान है। तो दुखों के समाधान के लिए तो हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वैज्ञानिक लोग भी कर रहे हैं, व्यापारी भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जो दुखों का समाधान कर रहे हैं वो रिलेटिव दुख है। रिलेटिव मतलब आपेक्षिक, जो आपके लिए हो सकते हैं पर इनके लिए नहीं हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दांत में दर्द है, तो किसी व्यक्ति के दांत में भी दर्द है और वो एक दांतों के डॉक्टर जो होता है डेंटिस्ट उसके पास जाता है, तो दुख किसके लिए है? मरीज के लिए। डॉक्टर के लिए दुख की बात है क्या? उसके लिए तो सुख की बात है। यदि लोगों के दांतों का दर्द बंद हो गया तो फिर उसके लिए दुख की बात है। अभी बरसात का सीजन है, अभी हर तरह की बीमारियां आती हैं बरसात में, किसी को कफ, किसी को कोल्ड, खांसी, जुकाम, वायरल, तो दुख हमको है, डॉक्टर की तो चांदी है, खुश है, वो तो वेट करता है ये सीजन आएगा अभी। तो ये इन दुखों के समाधान जो है, जैसे कि जो अपेक्षिक है, जो एक के लिए है दूसरे के लिए नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दुख जो है वो किसके लिए है? उस सबके लिए है। दांतों की बीमारी शायद उसको ना हो, लेकिन कोई ना कोई बीमारी तो जरूर होगी डॉक्टर को, तो बीमारी सबके लिए है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे दुख हैं। तो वास्तविक समस्या वह है जो सभी के लिए एक समान हो और कोई उसे चाहता ना हो। और तीसरा क्या है आपके नोट्स में लिखा है? तीसरा क्या है? जिससे कोई टाल नहीं सकता, बच नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं आप बताइए, बिना देखे नोट्स में, नोट्स नीचे रख दीजिए, कि जो सबके लिए है। मृत्यु सबके लिए है? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके लिए मृत्यु नहीं है? कोई है ऐसा? हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयास किया कि मेरी मृत्यु ना आए, उसने ऐसी तपस्या की कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पैर पर खड़ा है, और एक पैर पर जब व्यक्ति खड़ा होता है तो कई बार ऐसे करता है ना, बैलेंस कर सकता है, लेकिन वो कैसे खड़ा था? ऐसे खड़ा था, हाथ किधर थे उसके, पीछे थे, आगे थे, ऊपर थे और भी मुश्किल। यदि आप एक पैर पर खड़े हैं तो ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं, उसके हाथ ऊपर, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हजारों हजारों साल। और यदि आप खड़े हैं ऐसे, एक मिनट दो मिनट खड़े होंगे, मक्खी आ गई, मान लो कोई मक्खी आ गई मुंह पे, चींटियां आ गई, क्या करेंगे आप? उसके शरीर पर चींटियों ने घर बना लिया था और इतना घर की उसका मांस खा गया पूरा, फिर वो ऐसे खड़ा है। ऐसी तपस्या किस चीज के लिए? कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाए। अब ये जो डिज्नीलैंड है ना, उनके जो मालिक हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने डॉक्टर को बोला, भाई मेरी मृत्यु होने वाली है अभी, तो ये जो है हजारों लाखों डॉलर यहां आपको देता हूं, और कुछ तो करके आप क्या करो, मेरे शरीर को संभाल के रखना। और जब आप कुछ ऐसा योजना बना लोगे, क्योंकि आप बोल रहे हो कि कुछ सालों में हम ऐसी चीज बनाने वाले हैं जिससे किसी को मरना नहीं पड़ेगा, तो पहली बात तो वो मूर्ख है कि जो उनकी बात पर विश्वास कर रहा है, तो उसने पैसे दिए और डॉक्टर लोगों ने उसके शरीर को एकदम बड़े एक आइस, उसमें जो रेफ्रिजरेशन जहां पे बर्फ वगैरह रख के, उसको बर्फ तो नहीं था, एक अच्छा विशेष प्रकार का जो कूलिंग, ठंडा जगह है, और कुछ विशेष प्रकार के केमिकल डाल के उसके शरीर को संभालने का प्रयास कर रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है, इसके जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं कि अरे ये जिंदा हो गया फिर से, तो हमारा तो जो करोड़ों रुपया लाखों रुपया छोड़ के गया, वो हमारा क्या होगा? तो उसका प्लग निकाल देते हैं वो जो इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो भी मूर्ख जिसने पैसा दिया, और जो ये संबंधी है जिनको डर लग रहा है कि हम ये फिर से जिंदा होगा तो क्या होगा, उससे बड़े मूर्ख। तो ये जो व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी, ये क्यों सोचता है? वो इसलिए सोचता है कि हर व्यक्ति की इच्छा है कि वो हमेशा जीता रहे। कोई ऐसा व्यक्ति जो मरना चाहता है? कभी भी आप किसी डॉक्टर से बात करोगे ना, तो बताएंगे कि कितने लोगों को वो देखते हैं अस्पताल में कि शरीर का अंग अंग क्या हो गया है, शिथिल हो रहा है, अंग अंग जो है वो काम करना बंद कर रहा है। हमने जब कैंसर होता है किसी व्यक्ति को तो क्या होता है, किसी को मालूम है कैंसर होता है तो क्या होता है? कैंसर जो होता है अननेसेसरी ग्रोथ होता है, अनावश्यक रूप से जो शरीर की कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो बढ़ने लगते हैं, और जब वो बढ़ने लगते हैं तो धीरे धीरे जाके वो इतने बढ़ते हैं कि एक एक अंग को वो खत्म करना प्रारंभ कर देते हैं। पैर को खत्म कर दिया, किडनी को खत्म कर दिया, लीवर को खत्म कर दिया। तो ऐसा है कि जैसे आपका घर है और एक एक दिन आके व्यक्ति क्या कर रहा है, एक एक ईंट चुरा के लेके जा रहा है, बिक बीट ईंट आपकी आंखों के सामने, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके हाथ पैर बांध के डाल दिए हैं और आपकी आंखों के सामने एक 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 दिन क्या कर रहा है, एक एक ईंट निकाल के ले जा रहा है। तो आप अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं, अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। तो ऐसा है कैंसर कि अपनी आंखों के सामने एक एक शरीर, एक एक अंग शिथिल होता जाता है, पीड़ा इतनी होती कि व्यक्ति को मॉर्फिन, जो सबसे खतरनाक किस्म का जो नशा होता है, वो देना पड़ता है, इससे कि वो किसी तरह उसका जो ब्रेन है वो डेड हो जाए, वो पीड़ा ही ना महसूस कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं, आत्मा को दर्द होता है। फिर भी उसकी इच्छा क्या है, जैसी होश में आता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये प्लान है, मेरा वो प्लान है, जीने की इच्छा इतनी है। किसी मच्छर को भी मारने का प्रयास करोगे तो भागेगा वो निकल के आपके हाथ से। तो जीने की इच्छा जो है हर जीव के अंदर बहुत गहरी है। क्यों क्यों है? जीव का स्वभाव है वो, जीव शाश्वत है, जीव शाश्वत है, लेकिन क्योंकि वो शरीर में रह रहा है, लेकिन शरीर क्या है, वो नश्वर है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो मृत्यु जिससे कोई नहीं बच सकता है, लेकिन जो सबके जीवन में आती है, उसे कोई चाहता है? कोई चाहता भी नहीं। दूसरी बात है बीमारी। बीमारी सबके जीवन में आती है, चाहे करोड़पति हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई बच नहीं सकता उससे। कोई ऐसी दवाई बनाई है क्या जिसको खाने से कोई बोले कि अभी कोई बीमारी नहीं होगी मेरे को? कोई ऐसा अस्पताल है या दवाई है कि एक उसकी गोली खा लो और फिर क्या होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बोल सकता क्या ऐसा? बुढ़ापा, कोई है ऐसा जिसको बुढ़ापा नहीं आता? सबको आता है। कोई चाहता है उसे? कोई है ऐसा जो बुढ़ापा चाहता है? क्या होता है बुढ़ापे में? शिथिल हो जाता है, है? और क्या होता है? शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। बड़े बड़े जो सुंदर स्त्रियां होती हैं उनको बड़ा डर लगता है। बड़े बड़े जो हीरोइन होती हैं वो कैमरे के सामने आना बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं वो कमरे घर में जाके। क्यों? क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं होता कि उनके जो फैन हैं, उनके जो चाहते हैं, उनका ये फोटो देखें वो। सामने आना नहीं चाहते वो। भवानंदपुर आए थे कुछ पिछले साल, तो वो बता रहे थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, तो बता रहे थे लोग इतने पागल हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में शरीर ही सब कुछ है, उनको कि ज्ञान नहीं है। तो शरीर पर झोलिया आ गए, शरीर खराब हो गया तो फिर क्या फायदा जीने का? तो वो लोग क्या करते हैं, वो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके यहां से काटते हैं और ऐसे उसको खींचते हैं स्किन को, और फिर यहां पर उसको स्टिच करते हैं। तो क्या हो गया, वो पीछे खींच के वो टाइट हो गया, अभी स्किन लूज हो जाता है ना, स्किन बुढ़ापे में होता है ना, उसको टाइट कर देते हैं, फिर इधर से काटते हैं, फिर उसको खींचते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, यहां पे टाइट हो जाता है। लेकिन क्या आसान है ये ऐसा करना, काट के स्टिच करना? बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उनको संतुष्टि मिलती है कि अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर एक ऐसा जहर होता है, उससे मरेगा नहीं आदमी, लेकिन उसको इंजेक्ट करेंगे तो उससे वो यहाँ के सेल मर जाते हैं, यहाँ के जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, तो जो झुर्रियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। कैसे? वो स्किन नीचे लटक जाती है। लेकिन उसमें समस्या ये है कि फिर यदि आप हंसेंगे भी तो कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा, और रोएंगे भी तो भी कुछ, क्योंकि फ्लैट हो गया है, सतह सपाट हो गई है, लेकिन फिर भी उनको एक अच्छा लगता है कि अभी झुर्रियां नहीं है। तो लोग किस हद तक जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कोई कोई समाधान हुआ? कोई चाहता नहीं है और कोई टाल भी नहीं सकता। उसी तरह जन्म भी है, उसके बाद जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा होता है। तो ये सही समस्याएं हैं। जन्म, ये मां के गर्भ में जो बच्चा है 9 महीने उल्टा, सोचिए आप, किसी को बोरे में बांध के रख दें, और कल्पना कीजिए कि आपको बोरे में बांध के रख दिया जाए और उल्टा लटका दिया जाए, कितने दिन के लिए? 270 days, 9 months। और एक पाइप से आपके मुंह में भोजन भेजते रहेंगे बस। ऐसे थे हम लेकिन भूल गए अभी। वृद्धावस्था किसी को अच्छी लगती है क्या? देखिए, अरे मैं तो ऐसा नहीं होऊंगा। ठीक है, और कुछ हो जाएंगे। समथिंग सिमिलर इसके साथ जैसे कुछ होगा। और बीमारी में आजकल देखिए किस नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं, नई नई तरह की बीमारियां आ रही हैं। बोल रहे हैं डॉक्टर लोग, बोल रहे हैं हम बीमारियों पर विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति क्या बोल रही है? भौतिक प्रकृति बोल रही है जितना आप ज्यादा दवाइयां बनाओगे मैं उतनी नई नई बीमारियां लेके आते रहोगे हर साल। आप बच नहीं सकते और फिर मृत्यु, चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई गारंटी नहीं कब मृत्यु आ जाए। लोग बोलते हैं बुढ़ापे में जाके क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। लेकिन बुढ़ापे की परिभाषा क्या है? बुढ़ापे की परिभाषा है जो मृत्यु से थोड़ा पहले आता है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो हम अभी भी बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं सोचता कि मैं मरने वाला हूं। जो युधिष्ठिर महाराज थे, जब उनके 4 भाई जब पानी पीने के लिए गए एक एक करके, जब वो वनवास में थे, आपने सुना होगा ये कहानी, तो यक्ष बोलता था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब आप जल पीना, लेकिन वो जल पीने लगते थे। क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ऐसे व्यापार नहीं करता है कि आप उत्तर दो और फिर मैं कुछ जल पीऊंगा। क्षत्रिय जो है लड़ाई करके लेता है सब कुछ, तो उन्होंने सुना नहीं उसका। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जब गए तो उन्होंने देखा उनके भाई लोग जो है बड़े, उनकी मृत्यु हो गई है, तो बोले अच्छा ठीक है बताओ आपके क्या प्रश्न है। तो यक्ष जब प्रश्न पूछता है तो उसमें से एक प्रश्न उसका क्या होता है, एक प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस जगत का, ये बताओ। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति देख रहा है कि उसके पास वाले की मृत्यु हो रही है, उसके रिश्तेदारों की मृत्यु हो रही है, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उसके दादा परदादाओं की मृत्यु हो गई है, अखबार में रोज पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है अखबार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और कुछ नहीं अखबार में, फिर भी वो क्या सोच रहा है, मेरे मृत्यु कभी नहीं, मैं तो अभी बहुत जीने वाला हूं, बहुत जीवन पड़ा है, है? बहुत जीवन पड़ा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, ये बड़े दुख की बात है। तो ये समझना कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ये मुख्य कारण है हमारे दुख का, और इसका समाधान कोई भी भौतिक जगत की चीज हमको नहीं प्रदान कर सकती। भौतिक जगत में चाहे कोई करोड़पति हो अरबपति हो, जब मृत्यु आती है तो उसको कितना भी धन देगा उसको वो रोक नहीं सकता। कितने भी सुंदर स्त्री क्यों ना हो, अपनी सुंदरता से वो मृत्यु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता कि चलो भाई मुझे छोड़ दो। कोई बलवान व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैं तुमसे युद्ध करके तुम्हें भगा दूंगा, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। एक शिल्पकार था, उसने बोला मैं जब यमराज आएंगे ना यमदूत उनको धोखा दे दूंगा। बहुत विशेष शिल्पकार था वो, तो उसने उसने 20 ऐसे वो बनाए अपने चेहरे जैसे, अलग अलग मुद्रा में, ऐसे 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 अलग अलग पोज में, ऐसे 20 उसने ऐसे मतलब मूर्तियां बनाई, और उनके साथ साथ खुद भी खड़ा हो गया। तो जब यमराज आए तो वो बोला अरे कौन है इसमें, तो सब एक जैसे लगते हैं। तो उनको एक युक्ति दिखाई दी, तो बोले सब तो बड़े अच्छे हैं लेकिन ये मूर्ति में थोड़ा सा गड़बड़ रह गया, थोड़ी सी कमी रह गई है। तुरंत उछल पड़ा हुआ, अरे क्या गलती है, कोई गलती नहीं है इसमें, पकड़ लिया उसको तुरंत। तो हर व्यक्ति जो है उसका जो फॉल्स ईगो होता है, नित्य अहंकार बहुत बड़ा होता है, उसको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे में कोई गलती नहीं है। तो मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, वो तो खैर उनको पता था वो थोड़ी बच सकते हैं, लेकिन फिर भी कहानी के रूप में बता रहा हूं कि कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो। एक व्यक्ति ने पूरे अपने शरीर पे विष्ठा लगा ली, पूरा अपने शरीर को, कि यमदूत जी को तो थोड़ा घृणा होगी ना मेरे से, तो वो पिग लोगों को ले आए उठा के, चलो खाओ इसको बैठ के, तो यदि स्वर को लेके आएंगे आप और उसको विष्ठा कहीं दिख गई तो मृत्यु से नहीं बच सकते हैं, जन्म से नहीं बच सकते हैं, बीमारी से नहीं बच सकते हैं, बुढ़ापे से नहीं बच सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम आपको सब प्रकार से सुखी कर देंगे, सब प्रकार का आनंद हम आपको दे देंगे। क्या आनंद देंगे इस भौतिक जगत में, कोई आनंद नहीं है। जो दिखावा है, जो दिखता भी है कि आनंद है सुख है, वो केवल दुख का ही कारण बनता है बाद में, वो हम बाद में देखेंगे। तो क्लेश के कारण, जैसे कि यहां पर आप देखिए, हमारा शरीर और मन चार, ये बताया आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके अलावा और त्रिताप बताए जाते हैं। जैसे दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है, त्रिशूल होता है, तो वो त्रिशूल प्रेम करने के लिए नहीं है, है? त्रिशूल से कोई प्रेम नहीं करता। वही दुर्गा देवी जब राधा रानी के रूप में होती है तो उनके हाथ में क्या होता है, कमल होता है, तो वो प्रेम के लिए होता है। तो वही राधा रानी को दुर्गा देवी का रूप लेना पड़ता है, वही सरकार जो है जो अस्पताल खोलती है, स्कूल खोलती है, सड़कें बनवाती है, वही सरकार को क्या करना पड़ता है, कारागार भी खोलने पड़ते हैं, क्योंकि जीव बदमाश है। बहुत सारे बदमाश नागरिक भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सरकार ने जेल का जो मंत्री है, जो कारागार का मंत्री है, वो तुच्छ है। वो भी एक आईएएस अफसर है, वो भी एक अफसर है, उसने भी वो परीक्षा पास की है। तो ऐसा नहीं कि उसको बोलेंगे अरे तुम जेल मंत्री हो और तुम जेल के अफसर हो, उसको नहीं बैठो, है दूर हो, नहीं, वो उसका स्थान अपना विशेष है। तो दुर्गा देवी हालांकि इस भौतिक जगत की इंचार्ज हैं, लेकिन वो भी भगवान को उतनी प्रिय हैं, बल्कि वो भगवान के लिए एक बहुत ही विशेष कार्य कर रही हैं। क्या कार्य कर रही हैं, कि हम सबको याद दिला रही हैं, स्मरण करा रही हैं कि अरे भाई ये तुम्हारा घर नहीं है। याद है वो कहानी जो बताई शुरू में आपको, ये तुम्हारी ससुराल है, ये तुम्हारा घर नहीं है, भागो यहां से, यहां मार पड़ेगी नहीं तो। तो यहां पर मार पड़ती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में, और उसके बाद त्रिताप बताए गए हैं, त्रिशूल जो है, अधिआत्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो अधिआत्मिक दुख जो है वो कौन से हैं, हमारे शरीर और मन, हमारा मन जो है, हमारा शरीर जो है इतना परेशान करता है हमें, सबको अनुभव है इसका, इस परेशानी का। बहुत मन चिंताएं, अनेक प्रकार की चिंताएं आती हैं। फिर होता है नैसर्गिक आपत्ति, नैसर्गिक, जैसे कि अभी कितने साल पहले वो बंबई में, 3 साल पहले 2 साल पहले जो बारिश हुआ था, हाँ, तो किसी ने कल्पना की थी कि ऐसा होगा? किसी ने कल्पना नहीं, कुछ भविष्यवाणी नहीं, कुछ नहीं, म्यूनिसिपैलिटी भी तैयार नहीं थी। अभी तो नए नए अलग अलग जगह उन्होंने वो रख दिए पंप, फिर भी कुछ भरोसा नहीं है, किसी और तरीके से कुछ हो सकता है। भूकंप आते हैं और क्या होता है, तूफान आते हैं, कुछ भी हो सकता है, हाँ? सूखा पड़ता है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते कुछ भी हो सकता है। तो नैसर्गिक आपत्तियां जो होती हैं, अधिदैविक, नेचुरल कैलमिटीज बोलते हैं इंग्लिश में उन्हें। अब ये क्या है, दूसरे जीव अधिभौतिक, ये कौन है प्रिय, ये तो पहचाना हुआ लग रहा है ना, कौन है व्यक्ति? मच्छर, बच सकते हैं इनसे, कोई चाहता है इनको? फिर सबके पास आते हैं। तो ये जो है मच्छर है, खटमल है, उतने ही नहीं, हमारे सगे संबंधी भी, वो भी इसी में आते हैं ना चाहते हुए परेशान करते हैं, हैं? दूसरे जीव जो हैं, तो इन समस्याओं से बचना बड़ा कठिन है। और यदि हम इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो उसका समाधान क्या है वो हमें देखना है। तो ये जो भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल पता है किसी को? भेड़ होती है ना, भेड़, शीप, एक भेड़ एक जगह में जाएगी तो सारी भेड़ उसके पीछे, तो एक व्यक्ति भाग रहा है भौतिक सुख के पीछे तो सारे उसके पीछे, इसको ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, बस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो पता नहीं, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, उसने लिया ना तो मेरे पास होना चाहिए, ये भेड़ चाल है। और ये भेड़ चाल का फायदा सब कौन उठा रहा है? ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, और पूरा ब्रेन वॉश करके हमारे मस्तिष्क को पूरा अच्छे से कचरा भर देते हैं, उसमें धो देते हैं, बोले बस ये तो लेना ही पड़ेगा, यदि ये आपने नहीं लिया तो जीवन तो बेकार आपका, कोको कोला नहीं पी रहे तो फिर क्या, फिर तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए आपको, ये घड़ी आपके पास नहीं है, ये मोबाइल नहीं है, ये नहीं है तो क्या फायदा आपके जीवन का, ये कपड़े नहीं पहने आपने, ये कंपनी के, बेकार हो गया जीवन। तो ये बोलते हैं अनर्थ, एक होता है अर्थ, एक होता है अनर्थ। अर्थ मतलब जिसकी जीवन में आवश्यकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जीवन में जो बहुत आवश्यक होती हैं, जिसके बिना व्यक्ति नहीं जी सकता, जैसे भोजन है। कभी एडवर्टीजमेंट देखा है आपने कि भाई चावल या सब्जी, पर ऐसा विज्ञापन देखने को नहीं मिलता कि चावल खाओ, सब्जी खाओ, फल खाओ, ऐसा विज्ञापन मिलता है या देखने को? क्या विज्ञापन मिलते हैं? कोको कोला पियो, चॉकलेट खाओ, और क्या, नूडल्स खाओ, जिसकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, सिगरेट पियो, दारू पियो, तो ये अनर्थ है। तो जो चीज नहीं है, जो जिसकी आवश्यकता नहीं है हमें, वो चीज को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, और हम मूर्ख बन जाते हैं कि भाई ये नहीं लेंगे तो जीवन बेकार है, लेकिन जो जरूरत है वो नहीं लेते हैं। तो ये बड़ी चाल है भौतिक सभ्यता की, कि जो चीज की आवश्यकता है वो तो हम नहीं लेंगे, और जो चीज की नहीं आवश्यकता है उसको वो जबरदस्ती देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें नहीं फंसना है हमें, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है और समझना है कि क्या सही और क्या गलत है। भेड़ चाल, भेड़ के समान, जहां सब भेड़ एक दिशा में जा रहे हैं, एकदम सब भाग रहे थे, तो ये व्यक्ति भागने लगा, अरे कहां भाग रहा है, अरे पता नहीं कहां भाग रहा हूं, सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूं। जैसे कि वो सरगल सिंह की कहानी सुनी होगी आपने, कितने लोगों ने सुनी है सरगल सिंह की कहानी? सरगल सिंह जो थे वो मर गए, वो मर गए तो उसने, व्यापारी ने सिर मुड़ा दिया, इसने सिर मुड़ा दिया तो दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यापारी, अरे सिर मुड़ा दिया क्या, आपको नहीं पता सरगल सिंह मर गए, सरगल सिंह मर गए, तो उसने भी सिर मुड़ा दिया, इसने भी सिर मुड़ा दिया, तीसरा व्यक्ति बोला अरे भाई क्या हो गया, रो रहा होते रहते बोला अरे सरगल सिंह मर गए, इसने मुड़ा दिया, 3, 4, 5 सब लोग, और बाद में प्रश्न इशू हो गया, इतने लोगों ने मुड़ाया तो हमको मुड़ाना पड़ेगा, बाद में बेइज्जती हो जाएगी, सबके साथ चलना है ना, भेड़ चाल, बात गई आगे आगे मंत्री तक, मंत्री बोला अरे सारे सिर मुड़ा रहे, सरगल सिंह मर गए, तो उसने बोला अच्छा तो मुझे ही मुड़ाना पड़ेगा। उसने मुड़ा दिया। राजा के पास गया सिर मुड़ा के, तो राजा बोलता है अरे क्या हो गया तेरे को? बोले आपको नहीं पता सरदल सिंह मर गया। बोले है कौन सरदल सिंह? बोले मुझे तो मालूम नहीं है लेकिन सब ने मुड़ाया तो मैंने ही मुड़ा दिया। तो पूछते पूछते नीचे गए कौन है कौन है कौन है, उस व्यापारी तक पहुंचे जो पहला व्यक्ति था। अरे मेरा गधा कल मर गया, बहुत प्रेम करता था ना उससे, बहुत प्रेम था मुझे उससे। तो ये भेड़ चाल है, समझ आ रहा है कि सबके पास है सब कुछ ले रहे हैं लेकिन सोचो ना बैठ के थोड़ा कि इसकी जरूरत है क्या, कितनी आवश्यकता है, इससे जीवन में क्या सुख आने वाला है, नहीं होगा तो क्या मर जाऊंगा? कोको कोला नहीं पिया तो मरने वाला हूं क्या? लेकिन जीवन में ऐसी लत लगा देते हैं, ऐसी आदत लगा देते हैं कि यदि नहीं पिएंगे तो फिर ऐसा लगता है कि जीवन बेकार है। हाय हाय हाय, सिगरेट नहीं पिया तो हाथ पर कांपने लगते हैं, चाय नहीं पी तो सिर में दर्द। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जो मुख्य समस्या है उस पर नजर नहीं जाती है, बल्कि नजर किस पर जाती है? ये सब चीजों पर जो बेकार की चीजें हैं। देखिए कारें तो बना दी है लेकिन कार चलाने के लिए जगह ही नहीं है। यहां से आपको यदि बांद्रा जाना है तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा 2.5 घंटा। तो क्या भौतिक प्रगति जीवन की समस्याओं का वास्तविक समाधान है? ये प्रश्न हमें पहले पूछना है। इससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। आधुनिक प्रगति मतलब अल्पकालीन राहत, थोड़े समय के लिए राहत मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगता है कार में बैठे तो अच्छा लगता है थोड़ा, एसी में बैठे थोड़ा अच्छा लगता है, हम बैठे हैं इधर, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हमें समाधान मिल जाएगा। थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी लेकिन फिर वो समस्या बाद में किसी ना किसी रूप में आ जाएगी हमारे सामने, और भयानक रूप में आ जाएगी कई बार। प्रहलाद महाराज बोलते हैं भागवतम में, दुख औषधम तदपि दुखम, कि इस भौतिक जगत में जो दुख है उसकी औषधि बनाते हैं हम, और वो औषधि कैसी है? तदपि दुखम, वो औषधि दुख को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन उससे जो दुख कम करने का प्रयास किया था उससे ज्यादा दुख और क्या बन गए? बढ़ गए। जैसे कार बनाने से क्या हो गया? ट्रैफिक जाम, पॉल्यूशन, अभी तेल के भाव इतने बढ़ते जा रहे हैं तो उसके लिए एंग्जाइटी, पैसा कमाना पड़ेगा, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। हर इंद्रिय तृप्ति का साधन जो है इस भौतिक जगत में उसके ऊपर एक प्राइस टैग होता है, एक उस पर लेबल होता है, वो लगता है अरे वाह मजा करता हूं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी, लंबे समय तक नहीं मिलेगी। तो आधुनिक समाधान केवल समस्याओं को जन्म देते हैं, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। और ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक हमारा जो पागलपन है उनके पीछे भागने का वो दूर नहीं होगा। तो एटलीस्ट भक्त, हम यहां से भक्त हैं जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल काउंसिल लोग इधर आए हैं, कम से कम हमें यह समझना है कि इन चीजों के पीछे पागल नहीं होना है। यदि हम भी उन चीजों के उन लोगों की तरह भेड़चाल की तरह भागेंगे तो फिर उनमें और हमें अंतर ही क्या हुआ? तो सारा जीवन उच्च विचार, ये एक भक्त का नारा होना चाहिए। जो जरूरत है, बहुत जरूरत है प्रचार के लिए या जीवन में रहने के लिए, वो ठीक है, लेकिन जहां तक हो सके एक सादा जीवन होना चाहिए। तो उससे क्या होगा? समय कम बर्बाद होगा भौतिक चीजों के इकट्ठा करने में, उनको संभालने में। कार ले भी आए तो उसको संभालना पड़ता है। तो मैंने बोला कार नहीं रखनी है, बंबई में रहकर बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, अपनी स्थिति के अनुसार हमें अपनी चीजों को लेना है। यदि कोई बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, कोई किसी की बड़ी इंडस्ट्रीज है और वो टैक्सी में जा रहा है तो लोग मजाक बनाएंगे उसके। तो हर एक को अपने स्तर के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी वो देख सकता है कि क्या जरूरत है और क्या ऐश्वर्य है, उसमें वो देख सकता है क्या सही में आवश्यक है मुझे। लेकिन लोभ के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है भ्रमित हो जाता है या दूसरों को देख के भ्रमित हो जाता है, उसमें नहीं फंसना है, सिद्धांत को समझना है। जैसे कि बड़ी बड़ी ट्रेन है, कार हैं, बड़े बड़े अपोलो ये सब सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं आकाश में, हवाई जहाज हैं, तो ये प्रश्न यह है कि इतनी प्रगति हो रही है लेकिन समस्या क्या है? लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। आपको मालूम है ये बात, आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। बेंगलोर जो है वो सबसे ज्यादा प्रगतिशील शहर माना जाता है भारत का, बेंगलोर। सही में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं सॉफ्टवेयर की, जितने भी आईआईटी के बड़े बड़े जो विद्यार्थी हैं, एनआईटी के जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, उनको बेंगलोर में जॉब मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां उधर ही हैं। लेकिन सबसे बड़ा शहर बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहां पर हो रही है? बेंगलोर में हो रही है। क्यों? कुछ संबंध है दोनों का? संबंध है। जितनी ज्यादा आधुनिक प्रगति हो रही है, और जो सबसे ज्यादा आधुनिक प्रगति की जगह है, वहीं पर सबसे ज्यादा क्या हो रही है? आत्महत्या हो रही है। गांव में इतनी आत्महत्या नहीं होती है, गांव में ज्यादा ज्यादा वो खून खराबा करते हैं, क्योंकि उतना उनको वो नहीं है, झगड़ा करते हैं। वो दूसरा कारण है। ये देखो, हमारे एक डॉक्टर गर्ग साहब हैं, इधर आते हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो वो मुझे बता रहे, स्किन स्पेशलिस्ट है वो, तो मैं वो बोल रहे थे कि ज्यादातर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं कि इतना उनको स्ट्रेस होता है कि स्ट्रेस में वो पूरा खुजा खुजा के स्किन को उखाड़ लेते हैं, बाल तोड़ तोड़ के निकाल देते हैं। तो मेरे को उनको स्ट्रेस को ट्रीट करना पड़ता है, स्किन का ज्यादा बीमारी नहीं है। हर डॉक्टर के साथ सामने ये समस्या है आज कि उसके माइंड को ट्रीट करना है पहले उन्हें। माइंड से पूरा स्टमक बेकार हो जाता है, डाइजेशन नहीं होता है। हमारी बॉडी के दो पार्ट हैं, डायफ्राम के नीचे और ऊपर। तो ऊपर के जो अंग है वो नीचे के अंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और नीचे के जो है वो ऊपर को। तो जब व्यक्ति के मन में बहुत चिंता होती है तो उसको पचन नहीं होगा अच्छे से, और जब पचन नहीं होता है तो मन बहुत विचलित हो जाता है। तो आजकल ये दोनों कनेक्टेड है, सबको ये समस्या है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इतनी चिंता में है, इतना प्रेशर है उसके ऊपर, इतना दबाव है काम करने का, कि समय नहीं है। और कुछ करता भी है तो भी डांट पड़ती है, नहीं करता है तो भी डांट पड़ती है। तो ये देखो फ्रस्ट्रेशन में क्या कर रहा है, कंप्यूटर को खाने का प्रयास कर रहा है। ये देखिए, ये होता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे आप क्योंकि एक टाइम बम उड़ाने का प्रयास कर रहा है उसे, बहुत हो गया अभी बस। तो क्या हो रहा है समाज में? हिंसा, बेरोजगारी, व्यसन, भ्रष्टाचार, तलाक, मानसिक तनाव, बलात्कार, आत्महत्या, खून बढ़ते जा रहे हैं। तलाक तो ऐसे हो गया कि जैसे बस सिंपल सी चीज, थोड़ी सी चीज हुई और सहनशीलता तो है नहीं है? बस छोड़ देते हैं एक दूसरे को। बॉम्बे में बहुत बढ़ गया है, भारत में बहुत बढ़ गया है, सब जगह आप देखिए मानसिक तनाव। तो इसलिए जीवन जो आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या? ऊंची इमारतें, लेकिन हैं क्या? छोटे उसूल। लोगों के जीवन में कुछ मूल्य नहीं रहा है। बड़े बड़े रास्ते हैं, बड़े बड़े रोड बनती जा रही हैं, लेकिन देखने की दृष्टि क्या है? बहुत संकुचित हो गई है। बड़े बड़े घर हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया 40 कमरों का घर, एक बुढ़ा एक बुढ़िया, ऐसा है? आप बोलेंगे नहीं, बॉम्बे में किधर है भाई, एक कमरे में रहते हैं चार पांच लोग। हैं ऐसे भी लोग जो बड़े बड़े घर हैं लेकिन रहने के लिए बहुत कम लोग हैं। अधिक सुविधाएं हैं लेकिन कम समय है हमारे पास उनका प्रयोग करने के लिए। अधिक पदवियां हैं लेकिन कम समझदारी है, अधिक ज्ञान है लेकिन कम निर्णय है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है लेकिन एक बेसिक डिसीजन नहीं ले पाते अच्छा जीवन में, सब गलत निर्णय हो जाते हैं। बहुत सारी औषधियां हैं, इतने सारे मेडिकल स्टोर खुल रहे हैं, इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो क्या होता जा रहा है? और खराब होता जा रहा है। बड़ा स्वामित्व, गिरते नैतिक मूल्य, बड़ी बड़ी पदवियां हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, बड़े बड़े टाई कोट पैंट सब पहन के जाते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य कुछ नहीं है, वैल्यूज नहीं है लाइफ में। सब कोई व्यक्ति आपको खाने के लिए दौड़ रहा है, सब प्रकार से धोखा करने के लिए तैयार है। एक बोल रहा था, एक भ्रष्ट अफसर ऑफिसर बोला, देखो पैसा तो मैं भी खाता हूं लेकिन मैं कम से कम काम तो करता हूं ना, बाकी के तो पैसा खाते नहीं, काम भी नहीं करते। तो बोला मैं ईमानदार। उसकी ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी का स्तर आजकल क्या है? पैसा खाना नहीं है, नहीं ईमानदारी का स्तर। ईमानदारी का स्तर है कि पैसा खा के काम कर दो, कम से कम उतना तो कर दो, क्योंकि बाकी के पैसा खा के भी काम नहीं करते। तो ये समस्या है। तो हमें जीविका कमाने का ज्ञान है किंतु जीवन जीने का नहीं। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, लेकिन कैसे उस पैसे का प्रयोग करना है वो बुद्धि नहीं है। वो बुद्धि तभी आएगी जब हम भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे, शास्त्रों को समझेंगे। हमारी आमदनी बढ़ गई है, सैलरी बहुत बढ़ गई है लोगों की। पहले जमाने में लोग 100 रुपए 200 रुपए ऐसे सैलरी होती थी, वेतन होता था। अअभी कितना वेतन है? 20,000 30,000 50,000। उसमें भी खर्चा नहीं चलता, क्यों? क्योंकि मूल्य घट गए हैं। मूल्य मतलब वैल्यूज, जो जीवन के जीवन जीने की जो तरीका है वो खत्म हो गया। अभी पहले जमाने में ऐसे तांबे के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे, पीढ़ियों पीढ़ियों तक चलते रहते थे। अभी तो हर हफ्ते हर महीने नए नए मॉडल चाहिए उनको, तो फेंकना है, हर चीज को फेंकना है। तो ये जो सभ्यता है यूज एंड थ्रो, मतलब प्रयोग करो उसको फेंक दो फिर, ये सभ्यता पाश्चात्य देशों की सभ्यता है। और उसमें क्या होता है, पहले चीज को प्रयोग करो फिर फेंक दो, और फिर जो व्यक्ति है उसको भी प्रयोग करो और फेंक दो। उसी तरह जो पति पत्नी है उसको भी थोड़े दिन साथ में रहो और फिर फेंक दो, बस अभी नया मॉडल लाएंगे। हम चांद पर जाकर आए किंतु नए पड़ोसी को जाकर मिलने में कष्ट होता है। आसपास के लोग भी बात नहीं करते एक दूसरे से, डर लगता है, पता नहीं कैसा व्यक्ति है क्या करेगा। बड़े बड़े समाज, खोखले संबंध, ऊंचे लोग, गिरा चरित्र, ये सब चीजें हैं। पति पत्नी की दुगनी कमाई लेकिन ज्यादा तलाक, क्योंकि जब दोनों कमाते हैं तो बोलता है मैं बड़ा हूं, और वो बोलता है मैं बड़ा हूं, कौन किसकी सुनेगा। बड़ी बड़ी इमारतें हैं लेकिन टूटे हुए परिवार हैं, बहुत ही दुख की बात है। और जब जीवन में बेसिक मूलभूत पारिवारिक जीवन नहीं है तो फिर क्या, बच्चों की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाती है उसमें, बड़े दुख की बात है। यह वह समय है जब प्रदर्शन खिड़की में तो बहुत सामान है किंतु गोदाम खाली है। बड़ा बड़ा दिखावा है, बड़े बड़े मॉल हैं लेकिन गोदाम खाली है, घर में कुछ सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो इसलिए उपभोक्ता भाव, देखिए ये बहुत सारा सामान खरीद के ला रही है लेकिन सामान खरीद के लाने के बाद भी घर में कोई सुख नहीं है। तो ये जो भौतिकतावादी जीवन है ना, कि जिसमें नई नई चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, ये ले लो वो ले लो, इससे कुछ प्रेम मिलने वाला है क्या? यदि ये जूता उसने खरीद भी लिया तो कितने दिन तक इसको आनंद आएगा जूता पहन के? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार प्रभुपाद जी बताते हैं, इस भौतिक जगत का जो सुख है वो भोग और त्याग होता है। मतलब थोड़ा सा आप भोग करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका आप त्याग देते हैं, अच्छा नहीं लगता वो कुछ समय बाद, फेड्स अवे, द एंजॉयमेंट फेड्स अवे, फीका पड़ जाता है। कोई सा भी अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीद लो, अच्छे से अच्छा जूता खरीद लो, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद लो, पहली बात तो दुकान से नीचे उतरते लगता है शायद गलत ले लिया कुछ, तो फिर मन को मनाएंगे भी नहीं, अच्छा लिया है, अच्छा लिया, सबको दिखाया, एक व्यक्ति ने भी थोड़ा ऐसा नजर कर दी अच्छा नहीं है तो तुरंत उसका भाव कम हो जाता है, और दो चार बार पहन लिया तो फिर बेकार। अभी वो आपको आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, तो अभी क्यों नहीं सुख दे रहा? क्योंकि जो भी जगत की चीज है वो थोड़े समय बाद क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, भौतिक जगत में वो है ही नहीं। तो यहां पर तो ये जो सुख की जो खोज है ना, कि मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गलत जगह खोज है। जैसे कि भागवतों में बताया जाता है कि इंद्र तृप्ति सुख का स्रोत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आंखें हैं, आंखों से हम अच्छी अच्छी चीजें देखने का प्रयास करते हैं ना, तो हमें क्या लगता है आंखों से हमें सुख मिलेगा। लेकिन भागवत में उदाहरण दिया गया है पतंग का। पतंग मातंग कुरंग भंग मीन हता पंच बिरेव पंच, जो पतंग होता है पतंगा है ना, फायर फ्लाई, तो वो अग्नि की ओर आकर्षित होता है। तो अग्नि की ओर जब वो आकर्षित होता है तो क्या होता है उससे, किसी को मालूम है क्या होता है जब वो अग्नि की ओर आकर्षित होता है? जल के भस्म हो जाता है। तो ऐसा होता है। उसी प्रकार से जो कान होते हैं, कान के लिए उदाहरण दिया गया हिरण का, हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी बहुत ही मधुर क्या चलाता है, बीन बजाता है, संगीत, और उससे वो आकर्षित होता है और पकड़ लिया जाता है। उस तरह उदाहरण दिया गया है नाक के लिए मधुमक्खी का, कि मधुमक्खी इतना आकर्षित होती है वो कमल के प्रति कि अंदर जाके उससे मधु चूसती है और वो इतना उसमें मग्न हो जाती है कि रात को कमल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अभी मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, यदि वो चाहे तो पेड़ के अंदर भी छेद कर सकती है, पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होता है पेड़ का, ट्री बार्क। लेकिन क्योंकि वो इतनी आसक्त हो गई है अभी वो शहद से, वो भूल जाती है कि मैं इस जो कमल है जो इतना सॉफ्ट है, इतना कोमल है, इसको भी मैं भेज सकती हूं। तो वो क्या करती है, उसको अंदर ही दम घुट के मर जाते हैं। ये आसक्ति है। और जिह्वा के लिए उदाहरण दिया गया मछली का, जब वो होता है जो मछुआरा अंदर कांटा डालता है उसमें एक बेट होता है, उसमें कुछ कीड़ा लगा देता है और वो आकर्षित होती है, जैसे उसको पकड़ने का प्रयास करती है उसमें वो क्या होता है, वो मर जाती है। और स्पर्श के लिए उदाहरण दिया गया हाथी का, हाथी के बारे में सुना है आपने, क्या विशेषता है हाथी की, कि हाथी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, हथनी को, फीमेल एलिफेंट को आगे लेके आते हैं और ये हाथी पागलता में, पागलपन में उसके पीछे भागता है उसके साथ संग करने के लिए। और ये हथनी जो होती है प्रशिक्षित होती है, ट्रेन की होती है, वो उसको ऐसे रस्ते से लेके जाती है जहां पर एक बड़ा गड्ढा होता है, उसके ऊपर घास रहती है और जब वो वहां से गुजरता है तो नीचे गिर जाता है, उसको पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह से शास्त्र बताते हैं कि ये तो जीव है, इनका एक ही इंद्रिय इतना अविचलित है, लेकिन हमारी तो पांचों शक्तिशाली हैं। जो पतंगा है उसकी केवल क्या है, आंख है। जो हिरण है उसके केवल कान है। जो मधुमक्खी है उसकी केवल नाक है। जो मछली है उसकी केवल जिह्वा है। और जो हाथी है उसकी केवल क्या है, स्पर्श, उसकी त्वचा। लेकिन जो मानव है उसका क्या है, उसका तो पांचों अनियंत्रित है, वो पागल हो जाता है उसके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए। तो यदि हम उन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारी क्या दशा होगी, जरा सोचिए किस तरह गहरे अंधकार में हम डूबने वाले हैं। तो इन इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, ना कि इन इंद्रियों को अनियंत्रित छोड़ देना, इन इंद्रियों को पागल बना देना। तो आजकल का जो भौतिक समाज है, जो बड़े बड़े विज्ञापन है आप देख रहे हैं, वो क्या करते हैं, हमारी इंद्रियों को और क्या कर देते हैं, पागल बना देते हैं। और व्यक्ति पागल हो जाता है उसको प्राप्त करने के लिए, कुछ भी करने का प्रयास करता है उसे प्राप्त करने के लिए। तो ये बड़े दुख की बात है। तो इसलिए जैसे कि यहां पर लिखा है, सबसे विख्यात और धनी लोग सबसे अधिक दुखी और अकेले हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, उनको लगता है कि इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन इंद्रियों से जब संतुष्टि नहीं मिलती, घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, उसे अकेलापन लग रहा है। क्यों अकेलापन लग रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इस भौतिक जगत का कोई भी जो सुख है, कोई भी वस्तु जो है, वो थोड़े समय बाद क्या होती है, वो फीकी पड़ जाती है। बड़े से बड़ा घर भी क्यों ना हो, फीका पड़ जाता है, उसको खाने को दौड़ता है वो घर, भूत बंगला लगता है वो। क्योंकि व्यक्ति को प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कोई चाहिए, भौतिक चीजों से क्या प्रेम का आदान प्रदान करेगा। इसलिए जब घर में कोई नहीं होता तो लोग कुत्ता, बिल्ली, चूहा कुछ तो पालते हैं, कुछ भी चलेगा, एक तो हो उसके साथ में कुछ प्रेम का आदान प्रदान कर सकूं। तो इसलिए वो लोग अकेला पड़ जाते हैं और इसलिए उन्हें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, कुछ लोग तो सांप, कुछ भी पालते हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो जो सही वस्तु की खोज है वो हम गलत जगह पर कर रहे हैं। जैसे कि जो सुख है, जो जल है, उसकी खोज यदि आप रेगिस्तान में करने जाएं तो मिलेगा क्या? तो जिस सुख की तलाश हम इस भौतिक जगत में कर रहे हैं, इंद्रियों के सुख के माध्यम से, भौतिक वस्तुओं के माध्यम से, वो गलत है। गलत जगह पर, यू हिटिंग द रॉन्ग टारगेट, गलत जगह पर आप प्रहार कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो यदि सुख की खोज करनी है तो मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में समझना पड़ेगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कि केवल इंद्र तृप्ति के माध्यम से मैं जीवन को सुखी नहीं बना सकता हूं, केवल इस भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूं। यदि भौतिक जगत की चीजों को प्राप्त करके मैं सुखी होता, यदि केवल मैथुन करके केवल सेक्स लाइफ से मैं सुख हो जाता, तो जो वैश्याएं हैं वो सबसे ज्यादा सुखी होती थी। सोचने की बात है ना, यदि सेक्स लाइफ जो मैथुन है, जो संभोग है, उससे सबसे ज्यादा सुख मिलता है, तो जो वैश्याएं हैं जो दिन में कितने सारे कस्टमर्स के साथ कर रही हैं, सबसे ज्यादा सुखी वो होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वो होती हैं, सबसे ज्यादा अकेलापन उनको महसूस होता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति आगे उनके से भोग करने का प्रयास करता है, शोषण करने का प्रयास करता है। तो अंततः इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे का शोषण कर रहा है। तो इसलिए समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढना है, ना कि छोटा मोटा हल। वास्तविक आनंद, शांति एवं शाश्वत जीवन की खोज करनी है। तो इसलिए हमें प्रश्न पूछना है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या कारण है इसका? मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हैं और स्कूल में देखते हैं कि एक बच्चा है, धूप में, कड़ी धूप में वो ऊपर नीचे कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा है। देखा कभी आपने? ऐसा सुना है? कभी किया है बचपन में? टीचर ने कभी पनिशमेंट दिया? और आप गए उधर, ये जो बच्चा है ऊपर नीचे उठक बैठक लगा रहा है, तो आप सोचेंगे इसका कारण क्या है? कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता वो क्या सोचेगा, ये उठक बैठक क्यों लगा रहा है भाई? कोई बोले नहीं ऐसे लगा रहा है, सब लोग लगाते रहते हैं इधर उधर बैठ के। आप आओगे ना तो रोज एक ना एक व्यक्ति आपको लगाते हुए मिलेगा इधर। तो ये क्या अच्छा कारण है उसका? क्या कारण है, क्यों उठक बैठक लगा रहा है वो कान पकड़ के ऊपर नीचे? किसने तो दंड दिया, उसने दंड क्यों दिया है? कुछ गलती की होगी उसने। तो ये प्रश्न पूछने का है कि मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ना, ये क्या है? दुख मतलब वरदान नहीं है, है? कोई उपहार नहीं है दुख। दुख क्या है? दंड है। तो दंड क्यों दिए? कुछ गलती किया गया मैंने? क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं किया। किसी का बुरा किया गया? कुछ बुरा नहीं किया। नौकरी करता हूं, पैसा कमाता हूं, अपने परिवार को चला रहा हूं, फिर भी दुख आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं ना, डू गुड बी गुड, अच्छे रहो, किसी का बुरा मत करो, भला मत करो, जो होता है करो, फिर भी दुख आ रहा है। क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? मैंने क्या गलती की? इसलिए भगवान पर आरोप लगाते हैं लोग, भगवान क्या हुआ ये जीवन में, क्या कर दिया आपने हमारे जीवन में, क्या कारण है दुख का? तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये इसकी बस सिम्टम नहीं देखता है। सिम्टम मतलब लक्षण। जैसे जो एलोपैथी साइंस है, अंग्रेजी दवाइयां जो होती हैं वो लक्षण पर आधारित होती हैं। सिर दर्द है, गोली खा लो, चलो खत्म। कोई और बीमारी है तो ये गोली खा लो, कोई वो बीमारी है तो ये गोली खा लो, तो उसके लक्षण को खत्म कर देते हैं, वो सिम्टम को खत्म कर देते हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है उसको नहीं देखते। जैसे मान लीजिए किसी के सिर में दर्द है, तो हो सकता है उसका कारण है उसके पेट में कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है। पेट में दर्द है तो हो सकता है पेट ठीक नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, पेन किलर दे देंगे, दर्द को कम करने की गोली। तो भौतिक जगत की जो समस्याओं का समाधान करने का जो प्रयास है, जो आधुनिक समाज कर रहा है, वो एलोपैथी दवाई के समान है, अंग्रेजी दवाइयों के समान। वो कैसा है? वो ऐसा है कि जैसे आपको जीवन में गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, दूर जाना है तो ये ले लो, और भी कुछ करना है तो वो ले लो, बुढ़ापा आ रहा है तो आपको यह काट के ऊपर पीछे खींच देंगे, है? है ना? आपका आपका लंग खराब हो रहा है तो कुछ और दवाई दे देंगे, आर्टिफिशियल पंप लगा देंगे अंदर। तो ये आर्टिफिशियल है, केवल ऊपर ऊपर से, लेकिन इसका जो मूल जड़ है उसमें तो जाओ। ये शरीर ही क्यों मिला मुझे जो धीरे धीरे क्षय होने वाला है? ऐसा शरीर ही क्यों लेने का? ऐसा शरीर नहीं है क्या कहेंगे जो कभी क्षय नहीं होता? कोई है क्या ऐसा शरीर? है, भगवान बोलते हैं। तो इसलिए हमको शास्त्र के पास आना है। पहली बात तो ये पूछनी है कि जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है, कौन दे रहा है? कोई बोले नहीं वो बच्चा खुद से उठक बैठक लगा रहा है, किसी ने तो दंड दिया ना उसे, वो दंड दिया उसके टीचर ने। तो इस जगत में भी जो दुख दिए जा रहे हैं वो कौन दे रहा है, ये प्रश्न मुझे पूछना है। तो जब ये प्रश्न पूछने की बात आती है तब भगवान की बात आती है। जगत कारण तुम्हें जगत जीवन कि हे भगवान आप ही जगत के कारण हो। तो जो व्यक्ति जगत का कारण है उसके विषय में प्रश्न पूछना है हमें। तो कोई व्यक्ति जगत के कारण के बारे में प्रश्न नहीं पूछना चाहता, क्यों लोग भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्या कारण है? मिथ्या अहंकार है, और क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? क्यों लोग भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते? क्योंकि भगवान को स्वीकार करने का अर्थ है भगवान के नियमों को स्वीकार करना। चोर है, हम किसी सरकार वरकार को नहीं मानता, कोई पुलिस वुलिस है हम नहीं जानता, हम अपना काम करेगा, तुम करो अपना काम, लेकिन पुलिस तो पकड़ेगी ना, और जब पकड़ेगी तो बोले अरे मुझे पता नहीं था भाई। मान लीजिए आप गांव से आए, पहली बार बॉम्बे में आए और गलती से फर्स्ट क्लास ट्रेन में चढ़ गए, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, सेकंड क्लास का टिकट है, चढ़ गए किसमें? फर्स्ट क्लास में। टीसी आया, बोला अरे टिकट तो सेकंड क्लास, मुझे मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अज्ञान हूं। बोले फिर ये दे दो आप 120 रुपए, जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, ये लाल पट्टी हमेशा याद आएंगे आपको, अभी कभी भूलोगे नहीं। तो ये जो भौतिक जगत के दुख है ना, ये उसके लिए है, याद दिलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि जब दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो व्यक्ति जो है ये नहीं सोचता कि मुझे अपने दुखों को कम करने के लिए जो गलत कार्य कर रहा हूं कम करूं, वो उनको गलत कार्य को और स्पीड बढ़ा देता है उसकी। जैसे कि जब हम कार लेके जा रहे हैं, स्कूटर लेके जा रहे हैं, जब ग्रीन है सिग्नल और जैसे येलो होता है, तो येलो का अर्थ है, पीली लाइट का अर्थ है कि आपको अभी गाड़ी की स्पीड क्या करनी है। लेकिन होता क्या है, ईमानदारी से बताइए, स्पीड और बढ़ा देते हैं। तो जब दुख आ रहे हैं तो समझना चाहिए, अरे दुख आ रहे हैं, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, तो गलत काम कम करना चाहिए, भगवान की शरण लेनी चाहिए, हरे नाम करना चाहिए, शास्त्रों का पठन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, और गलत काम करेंगे, और पैसा कमाएंगे, और कुछ उल्टा सीधा करेंगे, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए हमको समझना है कि दुखों का कारण क्या है, और इस दुखों का कारण यदि कोई व्यक्ति है जो हमें दुख दे रहा है, तो क्या उसको बहुत मजा आता है क्या दुख देने में हमें? इज ये सैडिस्ट, सैडिस्ट मतलब जो दूसरे के दुख में मजा ले। देखा आपने कभी, कुछ लोग होते हैं वो एक हाथ एक कुछ तो कीड़े को कुछ तो ऐसे एक डंडी से ऐसे टू 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 करते रहेंगे, उसको दुख देते रहेंगे, है? उनको अच्छा लगता है, बाद में उनको भी कोई ऐसे कीड़ा जब बनेंगे तो कोई उनको करेगा फिर। तो भगवान के ऐसे हैं कि हम, वो खुद तो बांसुरी बजा रहे हैं, मजे से कर रहे हैं गोपियों के साथ, और उनको हमें यहां छोड़ दिया, कहां छोड़ दिया, ये भौतिक जगत में भोगने के लिए। ऐसा नहीं है, समस्या यह है कि हम पहली बात भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, दूसरी बात यह है कि हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करना चाहते। तो ना जब भगवान ही नहीं है तो भगवान का अस्तित्व नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम, फिर कोई चिंता ही नहीं, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। तो इसलिए भगवान का अस्तित्व है या नहीं, कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है। तो यहां पर सब भक्त हैं, आपको तो ऑलरेडी आप हरिनाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने के लिए कैसे भगवान का अस्तित्व है, उसके विषय में आप कुछ पॉइंट यहां देख सकते हैं। इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन फिर भी जस्ट टू गेट एन आइडिया, एक समझदारी के लिए जिसको आप प्रीचिंग में प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारा जो भी वेग होता है, जो अर्ज होता है, उसकी सबकी पूर्ति की जाती है। हमें प्यास लगती है तो कौन देता है, भगवान जल देते हैं। भूख लगती है तो क्या हमारे लिए, भोजन है। किसने दिया, वो हमने बनाया क्या, भगवान ने बनाया। सृष्टि का मतलब क्या है, सृष्टिकर्ता, ये पूरी जो सृष्टि बनाई गई है किसी ने तो बनाई होगी। यदि नियम है, जैसे कि आप ट्रैफिक में जाते हैं तो वहां पर रेड लाइट होती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, पीला हरा लाल, तो वो नियम है कि लाल बत्ती पे क्या करना है, आपको रुकना है, तो वो नियम किसी ने तो बनाया होगा। इस तरह भौतिक जगत में बहुत सारे नियम है। क्या नियम है, क्या नियम है भौतिक जगत, कोई नियम बताइए, भौतिक जगत का एक नियम है कि व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद दहिनुस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये नियम है भौतिक जगत का कि व्यक्ति बच्चा है वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। नियम है ना, कोई बदल सकता है इस नियम को? तो नियम किसी ने तो बनाया होगा, कौन है वो? हाँ, तो वो पूछना पड़ेगा कौन है। आप एप्पल ऊपर फेंकते हैं, सेब, तो वो ऊपर चला जाता है, नीचे आता है? तो नियम है ना जगत का कि एप्पल यदि ऊपर फेंका तो कहाँ आ गया वो? कोई ऐसा एप्पल बनाया गया आपने जो सिर ऊपर फेंका तो ऊपर ही चला गया? तो नियम है, तो नियम किसने बनाया है? तो ये सोचने की बात है, तो कोई सोचता नहीं है। जैसे कि ये जो है ट्रैफिक पुलिस मैन है, नियम बनाने वाले। उपग्रह हम छोड़े हैं आकाश में, सैटेलाइट जिससे आपको ये टीवी प्रोग्राम वगैरह सब देखने को मिलता है। तो एक उपग्रह छोड़ने के लिए इतना सब कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारे हजारों हजारों जो वैज्ञानिक है वो कंप्यूटर के साथ अपने बैठे रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप ब्रह्मांड में यदि देखें तो कितने सारे ग्रह हैं जो अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी जो है उसका वजन कितना है? उसका वजन इतना है, आप समझ में नहीं पाएंगे, 6 × 10⁻²⁰ मीट्रिक टन, मतलब अरबों अरबों टन, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कितना भारी है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी की रफ्तार कितनी है? पृथ्वी घूम रही है, उसकी रफ्तार कितनी है? 106,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन नियंत्रण कर रहा है पृथ्वी की रफ्तार को? और जब वो घूम रहे हैं तेज रफ्तार से तो कुछ एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, सब अपने अपने दिशा में घूम रहे हैं, कोई तो नियंत्रण करता चाहिए उसके लिए। ये बगीचा है तो बगीचा कौन बनाता है ना? माली उसको मेंटेन करता है। अभी जंगल में जाएंगे तो जंगल में इतना सुंदरता से तो वो नहीं है। ये फोटो है, इसके कलाकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। तो फोटो को देखते हैं तो बूझते हैं इसका कलाकार कौन है, लेकिन जो भगवान ने फूल बनाया है उसके कलाकार को नहीं पूछते हैं। भगवान ने तो फूल बनाया है, उसके अंदर सुगंध भी डाली है, और अलग अलग प्रकार के फूल हैं, अलग अलग प्रकार के सुगंध हैं, और वो सब सुगंध पृथ्वी में है। केवल एक बीज बोते हैं हम जिसमें कोई सुगंध नहीं होती है, और जब उस बीज से पौधा निकलता है उसमें कोई सुगंध नहीं होती है, लेकिन जो फूल आता है उसमें कितनी विशेष सुगंध होती है। तो ये सब प्रश्न हम नहीं पूछते हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो भगवान नहीं है यह प्रमाणित करने के लिए कि आप सब जगह जाकर आए हैं। कई बार संकुचितवादियों से तर्क किया जाता है, लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, कि आपने सब जगह गए, आप पूछ सकते हैं उनसे। ये जो जिराफ है, जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची होती है, तो उसका जो हृदय है होता है वो कितना बड़ा होता है? 11 किलो का, क्योंकि 2 फीट लंबा उसका हृदय होता है, क्योंकि ऊपर तक पंप करना पड़ता है उसे ब्लड को। किसने बनाया ये? अब ये चमगादड़ है, चमगादड़ जो है वो उल्टा सो सकती है, देखा आपने, कमर बंद 180 डिग्री चक्कर मार सकती है, घुटना विरुद्ध दिशा में घूम सकता है उसका, किसने बनाया ये? कमरे में तारों की जाल ध्वनि प्रतिध्वनि होती है, क्योंकि वो उसको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो ध्वनि के द्वारा वो समझ में आता है उसे, अपनी आवाज में सुनाई दे इसलिए कान के स्नायु बंद हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से जो कुछ आवाज आती है तो उससे उसको आवाज मिलता है कि कहां जाना है अभी। और अपनी आवाज सबको पहचान सकता है, कुछ तो पानी में मछली भी पकड़ सकती है चमगादड़, उसी तरह ये मछली, ये पक्षी है, इसका नाम है रूबी हमिंग पक्षी। ये साल में 2 बार 1,000 मील उड़ता है, कितना उड़ता है? 2 बार 1,000 मील, मैक्सिको से दक्षिण अमेरिका तक, और अपने पंख हर सेकंड 75 बार फड़फड़ाता है। एक सेकंड में कितनी बार सोचो, एक सेकंड में कितनी बार? और लगातार 25 घंटे उड़ सकता है, और अपनी एक उड़ान में कुल मिलाकर 60,00,000 बार पंख फड़फड़ाता है। वैज्ञानिक अपने अति आधुनिक संगणक प्रणाली से उसके शरीर का अभ्यास करते हुए असमंजस में है, क्यों? क्योंकि उसका वजन केवल कितना है? 3 ग्राम है। 3 ग्राम का पक्षी 1,000 मील उड़ता है एक साल में 2 बार, और एक सेकंड में 75 बार पंख फड़फड़ाता है, कहां से उसको इतनी ऊर्जा मिलती है? सोचने की बात है ना, लेकिन फिर भी हम सोचते नहीं है। ऊंट बिना पानी के 8 दिन से ज्यादा रह सकता है, हम कितने दिन रह सकते हैं? ट्राई कीजिए कभी, निर्जल एकादशी का थोड़ा अनुभव होगा। कितने लोग किए हैं निर्जल एकादशी? तो अगले दिन लगता है एक दिन और थोड़ा ट्राई मार लेते हैं, वेट करते हैं। अरे कई बार निर्जल एकादशी को 8 बजे 9 बजे कई बार होता है शुरुआत पारायण के समय, अरे क्या हो गया ऐसे ऐसे करते रहते हैं। एक घुट में 130 लीटर पानी पी सकता है, स्टोर करने की क्षमता होती है उसकी, इसलिए तो ना रेगिस्तान में घूम सकता है वो कई दिन तक। रेत के तूफानों से आंखों की सुरक्षा के लिए पारदर्शी पलकें होती हैं, मतलब बंद हो गया दिखाई देगा, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, आंखें बंद है लेकिन फिर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि धूल उड़ती है, रेता उड़ता है। तो व्यवस्था किसने की है? हमने की है, अपने आप हो गई, बिग बैंग हो गया, हो गया। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए उसके पैर ऊंचे होते हैं, तो इस सब व्यवस्था भगवान ने की है। ये मकड़ी का जो जाला है स्टील से 5 गुना अधिक शक्तिशाली होता है, फिर भगवान की परिभाषा क्या है? तो ये कोई सोचता नहीं कि ये जो भगवान सब बना रहे हैं ये सब किसके लिए बना रहे हैं। तो ये भगवान है, ऐसी बात नहीं कि भगवान नहीं है, लेकिन जो नास्तिक है वो क्यों भगवान को स्वीकार नहीं करता? आपको बताया अभी मैंने, क्योंकि नियमों का पालन करना पड़ेगा। भगवान को निकाल दिया तो नियम छोड़ो, सब कानून छोड़ो, जो मनमाया करेंगे, जो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इंद्र तृप्ति से भोग करेंगे, इंद्र तृप्ति से भोग करके उनको क्या लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अभी आगे का हम कल करें, कित क्या टाइम हो गया? 9 बज गए ना, 9 बजे तक ही करते हैं ना जनरली, तो आज थोड़ा 15 मिनट लेट भी हो गया था शुरू करने में, तो कल करते हैं बाकी का, है ठीक है? ठीक है, किसी और कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो वैज्ञानिक के लिए बोला जा रहा है, उनके अनुसार हम पहुंच गए। और कोई प्रश्न? हाँ बोलिए। ठीक है, कल करें बाकी का या करना है? और अभी प्रश्न तो नहीं है आपका, सबको जाना भी होगा ना घर, लेट हो गया है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की। ये आपका गौर भक्तवृंद की जय।